أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد. قیامت میں معاد میں ہماری بحث ہو رہی تھی، اور غالباً شفاعت ابھی ہم نے شروع نہیں کیا تھا، یا کر لیا تھا؟ شفاعت شروع نہیں کیا تھا، یہیں سے بات کو آگے چلانا تھا. ویسے اگر آپ دیکھیں تو ایک مستقل اپنی جگہ پر ایک ٹاپک بن چکا ہے یہ اس وقت. جب مختلف کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو یہ الگ سے بھی بہت ڈسکس ہونے والا ٹاپک ہے، شفاعت. لیکن چونکہ اس کا تعلق انصافاً قیامت کے ساتھ ہے اور معاد کے ساتھ ہے، لہٰذا اس کتاب کے اندر اس کو قیامت ہی کے ایک سپلیمنٹری ٹاپک کے طور پر ڈسکس کیا گیا ہے. شفاعت پر گفتگو کرنے سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ شفاعت سے کیا سمجھتے ہیں؟ آپ لوگوں کے ذہن میں شفاعت کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے؟ یعنی کیا ہوا، یہ پروسیس کیا ہوا، اس پروسیس کے نتیجے میں ہوا کیا، وہ شخص جو ہے اس کو معافی مل گئی، درست؟ تو اس کے اندر کتنے ارکان یا فیکٹرز بنیں گے جن کو آپ کمپاؤنڈ کریں، ملائیں، تو پھر شفاعت کمپلیٹ ہوتی ہے. خدا بندے کے درمیان رابطہ رسالت نہیں ہے، خدا اور بندے کے درمیان رابطہ امامت نہیں ہے، خدا اور بندے کے درمیان رحمت کا رشتہ جو ہے وہ رابطہ نہیں ہے. رابطے تو بہت سارے ہیں، ان رابطوں میں ایک رابطہ شفاعت بھی ہے، مگر اس کے ذریعے سے شفاعت پوری طرح سے ایکسپلین نہیں ہو پائے گی. جب ہم کہتے ہیں کہ شفاعت، تو سب سے پہلے ہم جی فرمائیے. وہ شفا ہے بیٹا. قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، فیہ شفاءٌ للناس، شفاءٌ للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. شفا کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو کیور کرتے. بالکل صحیح ہے، ایک ریمیڈی ہے. مثلا شہد کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، ہنی کی، کہ پروردگار عالم نے شہد کی بات کی اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ فیہ شفاءٌ للناس. ہم یہ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر جو ہے اس کے ہاتھ میں شفا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے جو مریض بیمار ہوتے ہیں ان کا مرض دور ہو جاتا ہے، وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں، صحت مند ہو جاتے ہیں، ان کی بیماری دور ہو جاتی ہے، وہ شفا ہے. یہاں پر جو لفظ ہے وہ شفا، شفاعت، درست ہے؟ ہاں، یہ ساری تعبیرات ہیں، درست ہے؟ شفا بخش، یہ شفاعت ہے. شفاعت کے اندر اتنا تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ ایک ہے جس کی شفاعت ہو رہی ہے، اور ایک ہے کہ جو شفیع ہے، شفاعت کرنے والا ہے. شفیع، شفاعت کرنے والا، درست ہے؟ ایک وہ ہے کہ جس کی شفاعت ہو رہی ہے، درست، اور ایک وہ پروسیس ہے جس کو ہم شفاعت اس موقع پر کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. شفاعت کا ٹیکنیکل مراحل کو چھوڑتے ہوئے سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، جو صحیح بھی ہے، سیکنڈ بن جانا، دوسرا بن جانا، یعنی یہ جو شفیع ہے یہ सेकंड बन रहा है, ये पेयर बन रहा है। मसलन आपके पास एक हाथ है, ये दूसरा हाथ आ गया, आप एक थे, आपके साथ दूसरा आ गया, एक जोड़ आ गया, उसकी वजह से उसको कहा जाएगा कि ये शफी है, यानी सेकंड बन रहा है, दूसरा बन रहा है। तो अब यहाँ पर एक एतराज़, बहुत सतही एतराज़, बहुत ही सतही एतराज़ ये किया गया कि इसका मतलब ये है कि आपने खुदा के साथ दूसरा बना दिया, तो ये तो शिर्क हो गया। तो खुदा तो वादा उल्ला शरीक एक है, उसके साथ आपने दूसरा बना दिया। उन्होंने कहा कि आप खुदा के साथ दूसरा नहीं बनाया, वो जिसकी शफाअत हो रही है उसके साथ दूसरा बनाया है। वो जिसकी शफाअत हो रही थी, अभी वो अकेला था, खुदा की बारगाह में खड़ा हुआ था, परेशान परेशान, मसलन समझाने की रिश्त कर रहा हूँ, और अब एक दूसरा है जो कहता है कि मैं इसका शफी हूँ, यानी मैं इसकी शफाअत कर रहा हूँ, मैं इसको सेकंड कर रहा हूँ, सेकंड कर रहा हूँ बख्शिश तलब करने में, मगफिरत तलब करने में, मैं इसको सेकंड कर रहा हूँ। आप मेरी बात समझे, जिसकी शफाअत हो रही है उसके साथ वो दूसरा बन रहा है। शफाअत दूसरा बनते हुए क्या करता है शफी? शफी दुआ मांगता है। किससे दुआ मांगता है? खुदा से दुआ मांगता है। अब आप कयामत का दिन है उसको विजुलाइज करें, तो कयामत के दिन में एक शख्स है जो गुनहगार है, परेशान है, मुश्किल में है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और वहाँ पर वो खुदा से तो प्ली कर रहा है, डेफिनेटली वो खुदा से कह रहा है कि ऐ परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे। वहाँ पर तो कोई काफिर नहीं है ना, वहाँ पर अगर कोई काफिर है तो उस कुफर की वजह से जो उसने दुनिया में किया है, वहाँ पर अगर कोई मुशरिक है तो उस शिर्क की वजह से है जो उसने दुनिया में किया है, वरना खुद कयामत के मैदान में तो कोई काफिर नहीं है। क़यामत के मैदान में कोई मुशरिक नहीं है, क़यामत के मैदान में कोई मुनाफिक नहीं है, क़यामत के मैदान में तो सब सीधे हो गए बिल्कुल। वहाँ पर थोड़े बहुत हेल हुज्जत अगर किसी ने करनी भी थी तो कर ली, अब नज़र आ रहा है कि जहन्नम में डाल दिया जाऊँगा तो फिर क्या करेगा वो। वहाँ पर तो सब कहेंगे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो सारा इस दुनिया के अंदर है कि जब तक चीज़ें गैब के पर्दे में हैं उस वक्त तक इंसान मोहलत के साथ इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहा है, यही उसका टेस्ट पीरियड है, यही उसका असेसमेंट है, यहीं पर उसका एग्जामिनेशन है कि यहाँ पर वो क्या परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर उसने कुफर किया, मैं खुदा को नहीं मानता, मैं एक खुदा को नहीं मानता, मैं आखिरी रसूल को नहीं मानता, मसलन ये सारी चीज़ें करने की वजह से वो इस दुनिया में स्टेटस हासिल करता है काफिर का, मुशरिक का, नाफिक का। मसलन कयामत के मैदान में जब वो पहुंच गया तो अब तो खुदा से बातें कर रहा है, खुदा के फरिश्तों को देख रहा है, जन्नत और जहन्नम उसके सामने एक्सपोज हो चुकी हैं। तो अब वहाँ पर अगर कोई शख्स काफिर है, मुशरिक है, तो उस कुफर की वजह से जो दुनिया में उसने किया था वहाँ पर कुफर एग्जिस्ट नहीं करता। अब वहाँ पर तो वो बहरहाल खुदा से कह रहा है कि परवरदिगार मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे बख्श दे, मुझे मगफरत दे दे, ये वो सारी चीज़ें वो कर रहा है। एक ग्रोह है जिसके बारे में ये है कि उसके लिए शफाअत कबूल की जाएगी, वो भी हम आयतें देखते हैं। शफाअत कबूल की जाएगी तो किसकी कबूल की जाएगी? शफी कौन कौन हो सकता है? एक ही है। मगर ये खुद शफाअत है क्या कि ये जो कह रहा है ना कि ऐ परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, ऐ परवरदिगार मुझे बख्श दे, ऐ परवरदिगार मेरी मगफ़रत कर दे, ऐ परवरदिगार मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, इसकी इस दुआ के अंदर एक और दुआ शामिल हो रही है। वो जो शफाअत करने वाला है वो शफी है, वो भी कह रहा है ऐ परवरदिगार इसको बख्श दे, ऐ परवरदिगार इसको माफ़ कर दे, ऐ परवरदिगार इसकी मगफ़रत कर दे। ये दुआ जिसके साथ शामिल हो रही है उसको कहते हैं शफी, कि ये उसके साथ सेकंड बन रहा है, उसके साथ एक पेयर बन रहा है। बात वाज़े हो रही है आपके लिए? उसको कहते हैं शफाअत। तो फैक्टर्स इसके अंदर, एक तो प्रोसेस है शफाअत, एक वो है जिससे शफाअत की जा रही है वो खुदा है, एक शफाअत करने वाला है वो है शफी, एक वो है जिसकी शफाअत की जा रही है वो गुनहगार। ये है पूरे तीन से चार फैक्टर्स। क्लियर हो गया आप लोगों के लिए बात इसके अंदर? अब उसके बाद जो बहस है ना वो यही है कि साहब शफी कौन हो सकता है, शफाअत किसकी की जा सकती है, शफात का हक दिया किसने है, ये बातें हैं या वाकई इसकी कोई एग्जिस्टेंस है भी, ये है सारी बहसें जो इसके साथ जुड़ी हुई है। इनके आंसर्स हमें मिलते चले जाएंगे तो ये बहस मुकम्मल हो जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है जी, आइए अब देखिए इसको। एक बहुत अहम आयत है कुरान मजीद के अंदर, कुल लिल्लाह शफाअ जमीअ, कि अल्लाह ही के लिए है शफाअत सारी की सारी। यानी तुम कहाँ से आ गए सेकंड बनने वाले, तुम कहाँ से आ गए किसी और के लिए शफाअत करने वाले, अल्लाह ही है जिसके लिए अल्लाह ने शफाअत कबूल करनी है वो अल्लाह खुद ही कर लेगा। यानी तुम किसी और के लिए सेकंड नहीं बन सकते, वो सेकंड बनना होगा अल्लाह बन जाएगा उसके लिए। यानी दूसरे अल्फाज के अंदर अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। हु आर यू, तुम कौन हो, ये है कुरान मजीद की आयत। सूरह ज़ुमर के अंदर ये आयत आई है। अच्छा, और इससे मिलती जुलती मगर एलोबरेट करने वाली इस प्रोसेस को एक आयत है जो आयतुल कुर्सी से बिल्कुल मुत्तसिल है। मंजल लजी यशवाओ इन दहू इल्ला बेइज़्ने, कौन है जो अल्लाह की बारगाह में शफाअत करे, कौन है, किसकी मजाल है कि वो अल्लाह की बारगाह में शफाअत करे, इल्ला मगर ये बेइज़्ने ही कि अल्लाह ही उसको इज़्न दे, अल्लाह ही उसको इजाज़त दे। तो गौर फरमाया आपने, यानी अब उसका नतीजा क्या निकला, उस पिछली आयत को जो सूरह ज़ुमर की थी और इस आयत को आप मिलाइए तो नतीजा बहुत वाज़ह है कि अल्लाह ही के लिए शफाअतें सारी की सारी। अल्लाह ही अगर किसी को इख्तियार देना चाहे तो ये अल्लाह का इख्तियार है, खुदा से कोई चीज़ ज़बरदस्ती ना ली जा सकती है ना छीनी जा सकती है, नामुमकिन है। अगर अल्लाह किसी को ये इख्तियार देना चाहे, अब वो क्यों ये इख्तियार देगा, ऐन मुमकिन है कि जिसको वो शफाअत का इख्तियार दे रहा है परवरदिगार आलम उसका स्टेटस लोगों के सामने वाज़े करना चाहता है कि देखो ऐसे होते हैं मेरी बारगाह में शफाअत करने वाले, जिन्होंने अपने किरदार को ऐसा बनाया तो फिर उनको मैं ये हक़ देता हूँ कि वो मेरी बारगाह में इस तरह से किसी की सिफारिश करें, किसी के बारे में दुआ मांगें। दुआ सिफारिश ही तो है, और क्या है, दुआ एक सिफारिश ही है। माँ अपनी औलाद के लिए दुआ मांगती है, भाई भाई के लिए दुआ मांगता है, सब एक दूसरे के लिए दुआ मांगते हैं, वो सिफारिश है। मगर इस दुनिया के अंदर तो जो दुआ है वो उमूमी है, कोई भी दुआ मांगे किसी के लिए। मैदान क़यामत में जब किसी की बख्शिश या मग़फ़िरत के लिए कोई दुआ मांगने के लिए एंटाइटल्ड हो जाता है तो वो एंटाइटलमेंट उसको मिलता है खुदा की तरफ से। ये वो चीज़ है जो इस आयत के अंदर हमें समझाई जा रही है कि कौन है जो खुदा की बारगाह में शफाअत करे मगर ये कि अल्लाह ही उसको इजाज़त दे। वरना तो सबको अपनी अपनी पड़ी है वहाँ पर, वो दिन के जहाँ माँ औलाद से गाफिल हो जाएगी, शौहर और बीवी एक दूसरे से गाफिल हो जाएंगे, तो वहाँ पर कौन शफाअत करेगा, हर एक को तो अपनी पड़ी है। तो वो कुछ अफराद के जिनका खुदा ने एक स्टेटस रखा है परवरदिगार आलम, उनको ये इख्तियार देगा कि अगर तुम चाहो तो शफाअत कर सकते हो। परवरदिगार आलम की तरफ से एंटाइटलमेंट जिनके लिए है, क्या उनकी कोई फहरिस्त इस दुनिया के अंदर भी हमें दी गई है? जवाब जी हाँ, हमें इस दुनिया के अंदर भी एक फहरिस्त दी गई है कि ये वो अफराद हैं कि जो खुदा की बारगाह में शफाअत कर सकते हैं। अब ये बेसिक बातें हो गई, अब आइए ज़रा सा इस फहरिस्त के मुताबिक हम चलें कि जो आपकी इस किताब के अंदर मौजूद है। वला यशफाउना इल्ला लिमन इर्तदा, ये सूरह अंबिया की आयत है, आयत नंबर 28। और वो किसी की सिफारिश नहीं कर सकते मगर ये कि खुदा उसको पसंद करे। ये वैसी ही आयत हो गई जो अभी हमने डिस्कस की थी, दुरुस्त है? फिर उसके बाद एक और आयत है सूरह यूनुस की कि मा मिन शफीइन इल्ला मिन बाद इज़्ने, कोई उसकी इजाज़त के बग़ैर शफाअत करने वाला नहीं है। ये भी उसी कैटेगरी के अंदर जाएगी कि जिसके अंदर परवरदिगार आलम ने शफाअत को अपनी इजाज़त के साथ मशरूत किया है। फिर ये फरमाते हैं कि इस लिहाज से कुरान के मुताबिक शफाअत इज़्न और रज़ाए इलाही के तहत एक ऐसी साबित शुदा हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब इसके अंदर आ जाइए ज़रा सा, तीन ग्रुप हैं इस वक्त मोटे मोटे, शिया, सुन्नी और वहाबी हजरात। शियों के नज़दीक शफाअत बिल्कुल एक साबित शुदा हकीकत है कि है, एग्जिस्ट करती है अपनी शराइत के साथ, मगर एक हकीकत है। سنیوں کے نزدیک بھی شفاعت ایک ثابت شدہ حقیقت ہے. دو, پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں وہابی حضرات. آپ کا کیا خیال ہے, وہ شفاعت کا انکار کرتے ہیں یا شفاعت کو ایگری کرتے ہیں کہ شفاعت ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ شفاعت کا وہ بھی انکار نہیں کرتے, شفاعت کا ان پرنسپل وہ بھی انکار نہیں کرتے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ان کا جو ایشو ہے وہ ایک دوسرا ایشو ہے, اس کے اندر وہ لوگ یہ ڈسکس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب جن کو شفاعت کا حق دیا گیا ہے, یعنی وہ جو شفیع بنیں گے, کیا ہم ان کو مخاطب کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم ہماری شفاعت کرو, آپ ہماری شفاعت کریں, میدان قیامت میں آپ ہمیں مت بھولیے گا, ہماری شفاعت کیجیے گا؟ کیا آپ ان کو یہ مخاطب کر کے کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ یہ ہے ان کا اصل ایشو. وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو شفاعت کا حق خدا دے گا تو وہ کر دیں گے, لیکن یہ آپ نہ کہیں, آپ ان کو مخاطب کر کے نہ کہیں, آپ خدا کو مخاطب کر کے یہ کہیں کہ اے پروردگار ان کی شفاعت مجھے نصیب فرما, لیکن آپ ان کو مخاطب کر کے ڈائریکٹ مت کہیں. تو یہ اصل آپ کو بون آف کنٹینشن سمجھ میں آیا کہ اصل جو اختلاف, جو جھگڑا جس کے اوپر ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ, یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں دعائے توسل کے اندر, یا جو ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں کسی ولی کو مخاطب کر کے کہ یا وجیہن عند اللہ اشفا لنا عند اللہ, یہ جو ہمارا جملہ ہے جس کے اندر ہم مخاطب کر رہے ہیں کہ اے وہ جو اللہ کی بارگاہ میں وجی ہے, یعنی اس کا ایک مرتبہ ہے, مقام ہے, اشفا لنا عند اللہ, ہماری شفاعت کیجئے گا اللہ کی بارگاہ میں, یہ وہ جملہ ہے کہ جس کے اوپر ان کو اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ آپ لوگوں کو نہیں کہنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بالکل جائز ہے, وہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے, اس پر ہم بات کریں گے. مگر ابھی آ جائیے, ایک بنیادی جو ایشو ہے وہ یہ والا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ان پرنسپل وہ شفاعت کو ایگری کرتے ہیں, ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے سب. اور انکار کیسے ہو سکے گا؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر بڑی صراحت موجود ہے. یہ جو آیتیں ابھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں یہ قرآن مجید ہی کے اندر تو ہیں. اچھا, اب ان تین کے علاوہ ایک بہت چھوٹا گروہ ہے, بہت چھوٹا گروہ, کہ جس نے وہابیوں ہی کے اندر جو بالکل ایکسٹریم پر چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب, شفاعت ہوتی ہی نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں. یہ کوئی تھانہ ہے کہ جس کے اندر آپ نے انفلوئنس کر دیا اور انسپیکٹر سے اپنی مرضی کی کارروائی کروا لی, یہ اس طرح کے جملے بھی انہوں نے کہے. مگر وہ بہت چھوٹا گروہ ہے اور ان کا قرآن کا مطالعہ بہت سطحی ہے. یعنی قرآن مجید کے اندر وہ والی آیت دیکھ لی انہوں نے کہ ساری شفاعت تو اللہ ہی کے لیے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی دوسرا خدا کی بارگاہ میں شفاعت کہاں کر سکتا ہے, یہ تو خدا خود کہہ رہا ہے کہ ساری شفاعتیں تو خدا کے لیے. وہ دوسری آیتوں کو اگنور کر دیتے ہیں کہ وہاں پر ساری شفاعتیں کہنے کا مطلب یہ کہ سارا اختیار خدا کا ہے, تو بے شک سارا اختیار خدا کا ہے, لیکن اگر خدا ہی کسی کو اجازت دینا چاہتا ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے, جس کا خدا نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کہ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے مگر یہ کہ خود خدا اسے اجازت دے. اب اس کے بعد اس کو اسٹیبلش کرنے کے بعد انہوں نے ایک سوال پیش کیا آیت اللہ جعفر سبحانی نے, کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شفاعت کرنے والے کون ہیں جن کو آپ شفیع کہیں گے. ٹھیک ہے جی, ایک ہیں, سارے نہیں ڈسکس کیے انہوں نے, کچھ ڈسکس کیے ہیں اس کے اندر. ایک ہے گروہ ملائکہ کا, خود فرشتوں کا, کہ فرشتوں کے لیے قرآن مجید کے اندر یہ آیا ہے کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کم مم ملکن, ملک عربی میں فرشتے کو کہتے ہیں, ملک ملائکہ اسی سے نکلا ہے, کم مم ملکن فی السماوات, اور آسمان میں کتنے ایسے فرشتے ہیں, لا تغنی شفاعتہم شیئن, کہ جن کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے سکتی, الا من بعد ان یعذن اللہ لمن یشاء ویرضی, بعد اس کے کہ اللہ اجازت دے ان کو اور ان کی شفاعت سے راضی ہوں. جن کے لیے اللہ اجازت دے ان کے لیے وہ شفاعت کریں, اور جن کے لیے اللہ راضی ہوں ان کے لیے وہ شفاعت کریں. بالکل صحیح ہو گیا بھائی. بٹ نیچرل آپ سوچئے نا کہ ملک کیوں سفارش کرے گا, ملک کیوں شفاعت کرے گا؟ اگر پروردگار عالم اس کو اجازت ہی نہ دے تو کسی فرشتے کو ضرورت کیا ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں کسی کے لیے شفاعت کرے؟ کیوں, کیا ضرورت ہے اس کو؟ یہ ہوگا ہی اس وقت کہ جب پروردگار عالم کی طرف سے اس کو اجازت مل جائے. دوسرا جو سب سے بڑے شفیع ہیں, شفیع روز محشر, ختم مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے اندر قرآن مجید کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 کہ عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ ان قریب آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے گا۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود، محمود یعنی قابل تعریف مقام، محمود کہتے ہیں جو قابل حمد، قابل تعریف، قابل تعریف مقام۔ یہ خود پروردگار عالم کی طرف سے وہ اسٹیٹس دیا جائے گا کہ جس میں پیغمبر اکرم اپنی امت کے لیے ہاتھ اٹھا کر سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے ملائکہ کا ذکر بھی کر دیا کہ یہ ہیں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ ہیں جو خدا کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد انٹرسٹنگ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی اپنی ایک حدیث بھی ہے اور بہت اہم حدیث ہے، کیونکہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ انما شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اور ڈر بھی لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس حدیث کا غلط مطلب کوئی نکال لے اور جسارت پر آمادہ ہو جائے۔ انما شفاعتی، میری شفاعت لأہل الکبائر من امتی، گناہان کبیرہ کرنے والوں کے لیے ہے، جو میری امت میں گناہان کبیرہ کرنے والے ہیں ان کے لیے میری شفاعت ہے، یعنی ان کے لیے بھی میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگوں گا پروردگار کی بارگاہ میں۔ بس بیٹا ہاتھ نکال لو، بہت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ انما شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت جو ہے اہل کبائر کے لیے، اہل کبائر یعنی کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے، من امتی، جو میری امت میں سے۔ اچھا، اب انٹرسٹنگ کیا ہے کہ ایک ہے جس نے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد تو ہر گناہ معاف ہو ہی جاتا ہے نا، گناہوں کی دو قسمیں کی گئیں، ایک گناہ گناہ کبیرہ ہے اور دوسرا میجر سنس، مائنر سنس۔ کیا ڈفرینس ہے ان دونوں کے درمیان؟ اینی بڈی؟ بڑا گناہ، صغیرہ ہے نا چھوٹا گناہ، کیسے ڈیفائن ہوتا ہے؟ خود قرآن مجید کے اندر یہ تقسیم آئی ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم نے اپنے آپ کو کبائر سے بچا لیا تو جو سیئات ہیں، سیئات اس کے مقابلے میں کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبیرہ کے مقابلے میں، وہ صغیرہ ہیں، وہیں سے نکلی ہے یہ اصطلاح۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر لمم کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر، یہ صغیرہ کے لیے مختلف تعبیرات ہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ جناب اگر تم نے کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا لیا تو صغیرہ کو تو ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے، اگر تم نے کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا لیا تو صغیرہ کو ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کبیرہ بولتے کس کو ہیں، صغیرہ بولتے کس کو ہیں؟ بحث تو ہے نا، تو پتہ تو چلے کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ اینی آئیڈیا؟ کس کو کبیرہ بولتے ہیں، کس کو صغیرہ بولتے ہیں؟ اور صغیرہ، مثلا فرض کیجئے ایک آدمی ہے وہ نماز چھوڑتا ہے تو کسی اور کو نقصان تو نہیں ہو رہا ہے، رمضان کا روزہ اس نے کبھی نہیں رکھا، دیٹس ٹرو۔ یہ تو آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں نا، آئی نیڈ ڈیفینیشن۔ جناب ایک وعید، آپ لوگوں نے ایک کتاب یقیناً دیکھی ہوگی، آیت اللہ دستغیب کی، گناہ کبیرہ، دیکھیں گناہ کبیرہ، اس کو اسٹارٹ میں دیکھیے گا، وہاں پر آپ کو اس کی ڈیفینیشن ملے گی۔ میں تو اس وقت سے بھی خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہے وعید، وعید کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے وعید۔ وعدہ کا مطلب ہوتا ہے پرومس، وعید کا مطلب بھی ہوتا ہے پرومس۔ جنرلی وعدہ پازیٹیو سینس کے اندر آتا ہے، قرآن مجید کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو وعدہ یعنی جنت کا وعدہ، جنت کا وعدہ۔ وعید پنشمنٹ کے لیے ہوتی ہے، چیز وہی ہے، پرومس ہی ہے، मगर वो पनिशमेंट के लिए हो तो उसको वईद कहा जाता है। कुछ गुनाह वो हैं कि जिनका जिक्र आया है पनिशमेंट का जिक्र नहीं आया। कुछ गुनाह वो हैं कि जिनके लिए कहा है कि अगर ये किया तो जहन्नम में डाल दूंगा, अजाब की बात की, आग का अजाब उसके लिए, चाहे कुरान के अंदर आए चाहे हदीस के अंदर आए। लेकिन अगर ऐसा है तो उसको कहेंगे वईद इसके ऊपर आई है। जिसके लिए वईद आई है वो कबीरा गुनाह है। जिसके लिए भी वईद क्लियर कि ये किया तो ये हो जाएगा, आग में डाल दूंगा, गुनाह होगा तो जहन्नम में डाल दूंगा अगर परवरदिगार ने ऐसा किया कि वईद उसके साथ शामिल है या पैगंबर के ज़रिए से वईद आ गई, तो उस सूरत में उसको कहा जाएगा गुनाह कबीरा, और अगर नहीं है तो फिर गुनाह सगीरा उसको माना जाएगा। इसके अंदर और भी बातें, मैं इस वक्त इसकी डिटेल, इस वक्त हमारा टॉपिक गुनाह कबीरा और सगीरा नहीं है, तो बात आ गई दरमियान में तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। तो ये एक मायार इसका बयान किया गया, ठीक है। अब इत्तेफाक ऐसा है कि कल ही मैं देख रहा था अल्लामा सैयद अली नकवी साहब ने भी एक तरह से वो बात कही है कि बाज़ औक़ात आपको लगता है कि कोई गुनाह छोटा है मगर उसके कॉन्टेक्स्ट को अगर आप देखें तो वो गुनाह जो है बहुत बड़ा हो जाता है। मसलन एक ही रुपया आपने किसी से छीन लिया, खुदा ना करे, मगर वही एक रुपया उसके पास था, तो बाज़ार तो आपको लगेगा कि एक रुपया आपने छीना है, लेकिन ये कि एक रुपया किसी और का छीना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि एक ही रुपया तो उसके पास था, ये ले लिया, वो रोटी नहीं ले सका, मर गया, इम्पैक्ट उसका बहुत ज़्यादा है। तो बहुत से उलमा ये कहते हैं कि जनाब अली खुदा बेहतर जानता है कि कबीरा क्या है और सगीरा क्या है, इस तरह केस टू केस वो डिफरेंट होता चला जाता है। फिर उसके बाद एक और चीज़ है और वो ये कि ला सगीरा माल इसरार, कोई सगीरा सगीरा नहीं रहता इसरार के बाद। एग्जैक्ट, एक आदमी है जिसने अपनी आदत बना ली कि ये तो छोटा गुनाह चलेगा। अशद्दु ज़ुनू मस्तहाना बिही साहेबहू, गुनाहों के, ये मौला का जुमला है कि गुनाहों में सबसे ज़्यादा शदीद गुनाह वो है कि जिसको करने वाला हल्का समझ ले, इतना तो चलता है। ये वो चीज़ है कि जो उस गुनाह को फिर कबीरा की तरफ ले जाती। इसका मतलब ये है कि ये बाई मिस्टेक नहीं हो रहा है। एक तो ये था कि बाई मिस्टेक हो जाता, ये बाई मिस्टेक नहीं हुआ है, ये इसरार कर रहा है इंटेंशनली उसके ऊपर, रिपीटेडली उसको किए जा रहा है। ला सगीरा माल इसरार, कि कोई सगीरा सगीरा नहीं रहता इसरार के बाद। इसरार का लफ्ज़ हम लोग उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी रिपीटेशन के बाद वो सगीरा खुद ब खुद कबीरा की कैटेगरी के अंदर चला जाता है। वला कबीरा माल इस्तिग़फ़ार, कबीरा कबीरा नहीं रहता इस्तिग़फ़ार के बाद। ये कायदा है, सगीरा सगीरा नहीं रहता इसरार के बाद, यानी वो एलिवेट कर जाएगा, कबीरा की कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। कबीरा कबीरा नहीं रहता इस्तिग़फ़ार के बाद, इस्तिग़फ़ार कर लिया तो कबीरा ख़त्म, ज़ाहिर तौबा का तो मतलब ही है कि उसके नतीजे में इस्तिग़फ़ार के बाद फिर वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाए। अगर इस्तिग़फ़ार जेन्युइन है कि उसके अंदर इंसान शर्मिंदा भी है, ज़बान से कह भी रहा है, अगर किसी का हक मारा है तो उसको लौटा भी दिया है, आइंदा ना करने का वादा भी कर लिया है, तो फिर परवरदिगार आलम की तरफ से तौबा गारंटेड। दुरुस्त हो गया बात, वाज़ है इसके अंदर। अब आइए, एक केस हमारे सामने ऐसा आ गया कि जनाब ठीक है उसने ये किया, ठीक है, गुनाहने सगीरा अगर हैं, कबीरा से वो वैसे ही अपने आप को बचाता है, तो परवरदिगार ने पहले कह दिया कि बाई चांस, यानी फिर सगीरा रिपीटेडली तो नहीं हो रहा ना, समटाइम्स हो गया, हो गया, तो खुदावंद मुताल ने पहले ही कह दिया, जो आयत मैंने अभी आपके सामने पढ़ी कि अगर तुम अपने आप को बचा लो, इन तश्तनेबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु, उन बड़े गुनाहों से कि जिनसे तुमको रोका गया है, नुकफ़िर अनकुम सय्यातिकुम, तो हम तुम्हारे सय्यात छोटे गुनाहों को वैसे ही माफ़ कर देंगे, उसके ऊपर पर्दा डाल देंगे, ये परवरदिगार आलम ने कहा। तो अब हमारे सामने एक कैटेगरी आ गई कि जिसके अंदर कबीरा नहीं है, कभी कभी खुदा ना करे उससे सगीरा हो गए, परवरदिगार ने वैसे ही ऐलान कर दिया कि उसको माफ़ कर देगा, यानी इसकी तो तौबा अगर ये करना भूल भी गया तो भी चल जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, तौबा के बाद तो कबीरा भी माफ़ हो जाता है, तौबा के बाद इस्तग़फ़ार के बाद तो कबीरा गुनाह भी अगर किया था तो खुदा माफ़ कर देगा, अगर वाकई जेन्युइन तौबा उसने की है, जेन्युइन इस्तग़फ़ार उसने किया है तो गुंजाइश है। ठीक है जी, कुछ गुनाह वो होते हैं कि जिनके बाद तौफीक सल्ब हो जाती है, यह बात याद रखिएगा, कुछ गुनाह वो हैं कि जिनके बाद तौफीक सल्ब हो जाती है, फिर परवरदिगार आलम तौबा की तौफीक ही उसको नहीं देता। मसलन कत्ल नफ्स मोहतरम, किसी मोहतरम इंसान की जान ले लेना ये बहुत बड़ा गुनाह है। मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सन व फसादन फिल अर्ज़ फकअन्नमा कतल अन्नास जमीअ, किसी एक बेगुनाह को मारा तो ऐसा है कि जैसे पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। नाउ दिस इज समथिंग टू मच, खुदा की नज़र में ये बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा हम देखते हैं कि इसके लिए तो बड़ी सराहत के साथ वईद आई है। तो अब मामला ये हो गया कि कुछ चीज़ें अब उसकी बहस भी इस वक्त करने की गुंजाइश नहीं है, हम इस वक्त एक सप्लीमेंट्री टॉपिक के तौर पर इसको ले रहे हैं। तो केस ये बनता है कि एक गुरोह तो वो है कि जिसने सगीरा बाई चांस कभी कुछ गुनाह हो गए, कबीरा किया ही नहीं, तो परवरदिगार ने कहा कि हम वैसे ही उसको माफ़ कर देंगे। एक गुरोह वो है कि जिसने गुनाह ने कबीरा किए मगर इस्तग़फ़ार कर लिया दुनिया ही के अंदर, उसको भी खुदा ने माफ़ कर दिया। तो अब शफाअत की ज़रूरत किसको है? शफाअत की ज़रूरत उन लोगों को है कि जो हैं ही गुनाह ने कबीरा में मुलव्विस। क्या ये ऐसे होंगे कि जिनके लिए कोई गुंजाइश बनती होगी और पैगंबर वहाँ पर एंटाइटल तो हैं ये जहन्नम के, ये बात ध्यान में रखिएगा। एक तो वो शख्स है कि जो काफिर है मुशरिक है, वो इस वक्त हमारे डिस्कशन में नहीं है, काफिर और मुशरिक की हम बात नहीं कर रहे हैं, जिनके लिए कुरान मजीद ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया खालिदीन फीहा अबदा, कि ये उसमें रहेंगे हमेशा हमेशा, तो ख़त्म हो गया केस ही ख़त्म हो गया। केस इस वक्त जो डिस्कस हो रहा है ये उन अफराद का डिस्कस हो रहा है जो काफिर नहीं है मुशरिक नहीं है मगर ये गुनहगार हैं, गुनाह हुआ इनसे, कबीरा गुनाह हो गया इनसे, बास कबायर इनसे हो गए, मगर बहरहाल ये लोग अच्छे काम भी किया करते थे, बुरे काम नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम भी करते थे, पैगंबर अकरम की उम्मत में भी थे। गुनाहों के ऊपर अगर देखा जाए तो शर्मिंदगी भी इनको थी, ऐसा नहीं है कि गुनाह के ऊपर इसरार ही इसरार था और शर्मिंदगी नहीं थी, ऐसा नहीं, मगर ना वो पूरी तरह से तौबा कर पाए ना पूरी तरीके से अपने आप को बचा पाए, अच्छे काम भी करते रहे वो भी होता रहा, अब चला गया मामला मैदान क़यामत में। अब क़यामत के मैदान में जब मामला चला गया तो वहाँ पर पैगंबर अकरम की शफाअत की वजह से उनकी मग़फ़िरत होने का इम्कान है या नहीं, दिस इज़ द क्वेश्चन। याद रखिएगा इसका पूरा पूरा इम्कान मौजूद है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें घूम फिर कर जाती हैं रहमत परवरदिगार के, परवरदिगार आलम रहम करना चाहता है अपने बंदों के ऊपर, उसके मुख्तलिफ अंदाज हैं, वो वैसे ही मैदान क़यामत में माफ़ कर दे, खुदा कहे कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक है मैं खुद ही इस बंदे को वैसे ही, वो जो इन्होंने कहा कि वो एग्जामिनर खुद ही कुछ ग्रेस मार्क्स दे के पास कर देता है, बहुत अच्छी बात। एक ये है कि आपके पास आ गया एक कि आपने प्रोविज़न रखा था कि भाई जो पूरे साल क्लास के अंदर जो टीचर ने इसको कंडक्ट किया था, देखा था इसका कंडक्ट, उसने कहा कि नहीं कैरेक्टर तो बहुत अच्छा है, पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया बट कैरेक्टर अच्छा है, अच्छा क्लास के अंदर पार्टिसिपेशन था, अखलाक अच्छा था, इस पर्चे की बुनियाद के ऊपर आपने कुछ एडिशनल मार्क्स देकर उसको पास कर दिया, ये एक अलग चीज़ है। एक आपने खुद कर दिया, एक है ये कि आपने कहा कि नहीं ठीक है इस वक्त इस चीज़ को कंसिडर करते हुए आपने उसको माफ़ कर दिया। ये मुख्तलिफ अंदाज हैं किसी को अकोमोडेट करने के। उसूल ये है कि परवरदिगार उसूल कि परवरदिगार जहन्नम में नहीं डालना चाहता, प्रिंसिपल ये है। अगर प्रिंसिपल ये होता ना कि बस कुछ भी करके इसको जहन्नम में डालो तो ये सारा प्रोविज़न ही ना रखा जाता, आप मेरी बात समझ। उसूल ये है कि परवरदिगार आलम जहन्नम में नहीं डालना चाहता, ये जो दुआए कुमैल के अंदर अमीरुल मोमिनीन ने समझाया है और बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, वो उसूल समझिएगा कि यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं। ये परवरदिगार की रहमत के मुख्तलिफ अंदाज हैं। कि खुदा माफ़ करना चाहता है। उस माफ़ करने का एक अंदाज़ ये कि खुद ही माफ़ कर दिया, अगरचे एंटाइटल्ड है कि उसको जहन्नम में डाला जाए और खुद ही माफ़ कर दिया, या शफाअत की वजह से माफ़ कर दिया, कि पैगंबर अकरम की शफाअत, अहले बैत की शफाअत, मलाइका की शफाअत, किसी की शफाअत की वजह से माफ़ कर दिया। ये सब शफाअत कर रहे हैं खुदा ही के इज़्ज़न से, खुदा ये चाह रहा है कि ये शफाअत करें कि इस बहाने से इनकी मगफिरत हो जाए, दूसरा ये कि इनका स्टेटस जो है वो लोगों के सामने वाज़ेह हो जाए कि ये होते हैं आइडियल अफराद के जिन्होंने इस तरह से ज़िंदगी गुजारी। ठीक है, मलाइका के केस के अंदर ज़िंदगी गुजारने वाला तो इशू वाला नहीं है, लेकिन इंसानों के अंदर तो बहरहाल बनता है। केस अगर आपके लिए वाज़ेह हो गया तो फिर उसके बाद ये हदीस समझना इतना मुश्किल नहीं रहती। जब पैगम्बर अकरम ने यह कहा, उम्मीद दिलाई है कि उम्मीद मत हारो, गुनाह अगर हो भी जाता है उम्मीद मत हारो, इन्नमा शफाअती लअहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी उम्मत के गुनाहाने कबीरा करने वाले जो हैं वो भी मायूस ना हो, अपनी से कोशिश करें, मैं वहाँ पर उनकी शफाअत करूँगा, यानी उनके लिए हाथ उठाऊँगा। कुछ अफराद वो भी हैं कि जिनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा, लेकिन मसलन उनकी सज़ा 100 साल की, खुदा ना करे 2 लाख साल की है, 3 लाख साल की है, खुदा रहम करे, तो उसके बाद फिर उसके अंदर कमी कर दी जाएगी, फिर उसके बाद शफाअत की वजह से उनकी सज़ा के अंदर कमी कर दी जाएगी। अब डिपेंड करता है केस टू केस, वी कैन नॉट बी जजमेंटल, हम नहीं कर सकते यहाँ पर कहकर खड़े होकर कहें कि ना किसके बारे में क्या होगा, वो खुदा जानता है। लेकिन ये कि जो प्रोसेस है जो हमको समझाया गया है वो ये वाला प्रोसेस। उसके बाद पैगंबर अकरम की एक और हदीस इन्होंने लिखी है यहाँ पर कि ओती तो खमसन व ओती तो शफाआ फदखर तो हा ले उम्मती फहिया लिमन ला युशरिक बिल्लाह, कि मुझे 5 चीज़ें दी गई हैं, उनमें से एक जो रेलेवेंट है वह ओती तो शफाआ, और मुझे शफाअत भी दी गई है कि मुझे शफाअत करने का हक दिया गया है, तो मेरी शफाअत उन लोगों के हक में होगी जो किसी को खुदा का शरीक करार ना दें। जो खुदा के साथ किसी को शरीक करार देते हैं फिर उनके लिए मेरी शफाअत नहीं है। यानी खुदा के निज़ाम को तो माने, खुदा के सिस्टम को तो माने, अगर वो खुदा के सिस्टम ही को नहीं मानते तो गोया वो खुदा के साथ किसी न किसी को वन वे और द अदर वो शरीक करार दे रहे हैं। तो मैंने गुजारिश की कि मलाइका, पैगंबर, खुद अहले बैत, उलमा, शोहदा, ये वो कैटेगरीज हैं कि जिनको शफाअत का हक़ दिया जाएगा। अच्छा, इनका एक तबसरा है, उस तबसरे को भी सुनिए कि इस ज़िम्न में इस अमर की तरफ तवज्जो देना ज़रूरी है कि शफाअत के अकीदे को तौबा कबूल होने के अकीदे की तरह लोगों के लिए गुनाह के इर्तिकाब में गुस्ताखी का सबब नहीं होना चाहिए। यानी ना तौबा के अकीदे में ये गलती होनी चाहिए और ना ही शफाअत के अकीदे में, बल्कि इसे उम्मीद की एक किरण समझकर अफ़ व बख्शिश की उम्मीद से राह रास्त पर आना चाहिए। वेरी ट्रू, पर्पज़ भी इसका यही है, और उन ना उम्मीदों की तरह ना होना चाहिए जो पानी सर से ऊंचा समझकर सही रास्ते पर आने की फ़िक्र छोड़ देते हैं। मस्कूरा बयान से यह अमर वाज़े हो जाता है कि शफाअत का नुमाया असर बाज़ गुनहगारों की बख्शिश व माफ़ी है। इस लिहाज से इसका असर सिर्फ शफाअत होने वालों के दरजात में तरक्की नहीं है, जैसा कि बाज़ इस्लामी फ़िरके मोतज़िला वगैरह कहते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये है बाबा कि जो शफाअत है ना उसका ताल्लुक दरजात के एलिवेशन से, बस। यानी आप एक तो हम कह रहे थे कि भाई ये तो जहन्नम में जाने के लिए क्वालिफाई तो करता है, लेकिन ये है कि शफाअत की वजह से परवरदिगार आलम ने अपनी रहमत का इसको मुस्तहक करार दिया, इसको वहाँ से निकाल लिया कि ठीक है मैंने माफ़ किया। एक ये कि नहीं जनाब इसका इधर से तो कोई ताल्लुक ही नहीं, इसका ताल्लुक है सिर्फ और सिर्फ जन्नत के अंदर एक शख्स जाने वाला है, यानी वो कहते हैं जहन्नम को तो आप हटा दीजिए, जन्नत में एक जाने वाला है, जन्नत में वो क्वालिफाई करता है मसलन सी क्लास, शफाअत के नतीजे में होगा ये कि उसका एलिवेशन हो जाएगा, क्या वो सी की जगह बी कैटेगरी के अंदर चला जाएगा, बी की जगह उसको ए कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाएगा। यानी यूँ आप समझिए कि मसलन आपका प्लॉट जो था वो तो था, लेकिन ये कॉर्नर का प्लॉट नहीं था, तो अब शफात के नतीजे में आपको कॉर्नर का प्लॉट मिल जाएगा, वेस्ट ओपन मिल जाएगा, वहाँ पर एडिशनल फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक वाइज। ये एक कॉन्सेप्ट मोतज़िला का इन्होंने बयान किया कि एक गुरु ने ये कहा कि नहीं साहब, उनको ये हज़म नहीं हो रहा था कि शफात ऐसे कैसे हो सकती है। मगर अगर आप उस पूरे सिनेरियो को देखें और उस कॉन्टेक्स्ट को देखें कि जो भी हमने डिस्कस किया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं रहती। उसूल ये है कि परवरदिगार अपने बंदों पर रहम करना चाहता है, परवरदिगार आलम ने क़यामत के दिन जहन्नम ही के अंदर डालने का फ़ैसला नहीं किया है, मैक्सिमम अफराद को वो माफ़ करना चाहता है, मैक्सिमम अफराद की वो मग़फ़िरत करना चाहता है। मर्सी, खुदा की मोहब्बत अपने बंदों से बहुत ज़्यादा है। अब ये उस बहस की तरफ आते हैं कि जो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि वहाबी हजरात जो हैं उनका नज़रिया ये है कि शफात तो ठीक है, मगर जिससे आप कह रहे हैं कि आप मेरी शफात कर दीजिए, चाहे ये मुसल्लम भी हो कि वो शफीए रोज़े महशर है, आप ये नहीं कह सकते। अगर आपने ये कहा तो ये शिर्क हो जाएगा और ये गुनाह हो जाएगा। ये उनका एक नज़रिया है जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ इसरार करते हैं। शियों के अंदर और सुन्नियों के अंदर सब इस बात के कायल हैं कि शफात एक मुसल्लम अकीदा भी है, और जो शफी है उसको मुखातब करके ये कहा जा सकता है। यही जो जुमला यहाँ पर इन्होंने कहा कि ऐ रसूल, खुदा के हुजूर मेरे हक़ में शफात कीजिए, ये मिसाल भी इन्होंने दी। या वो जुमला जो हम लोग दुआए तवस्सुल के अंदर कहते हैं कि या वजीहन इंदल्ला इश्फा लना इंदल्ला। इसका एक हिस्टोरिकल एनालिसिस इन्होंने किया है और बहुत अच्छा किया है। मुख्तसरन अगर आप इसकी तफसील पढ़ना चाहें तो मैं दो किताबें तो आपको भी सजेस्ट करूँगा, मगर शफी को मुखातब करना, ये है इस वक्त जो बहस, जो मैंने अर्ज़ किया कि वहाबियों के लिए ये इशू बड़ा सेंसिटिव बन गया। शिया और सुन्नी सब इस बात के कायल हैं कि आप शफी को मुखातब कर सकते हैं, आप उसको एड्रेस कर सकते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि आप मेरे लिए शफाअत करें खुदा के हुजूर, देर इज़ नो प्रॉब्लम, देर इज़ नो हार्म। इसलिए कि आप उसको ये नहीं कह रहे कि तुम खुदा बन जाओ, आप उसको ये नहीं कह रहे कि मैं तुमको खुदा का शरीक मानता हूँ माशाल्लाह, आप उसको ये कह रहे हैं तुम खुदा की बारगाह में मेरे लिए शफाअत करो, आप मेरे लिए खुदा की बारगाह में शफी बन जाओ। वो ओहदा जो खुदा की तरफ से उनके लिए है, उसी के लिए उनसे ये कहना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये है बुनियादी सवाल शियों की तरफ से और सुन्नियों की तरफ से। वहाबियों की तरफ से ये जुमला है कि नहीं जनाब, उनको अगर आपने मुखातब किया तो आपने खुदा के साथ शरीक करार दे दिया। आपको अगर कहना है तो आप खुदा को मुखातब करके ये कहें कि ऐ परवरदिगार, तू इनको मेरा शफी करार दे। हम कहते हैं हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुदा से आप ये कह सकते हैं, वो बिल्कुल कहने में कोई हर्ज नहीं, मगर जिसको खुदा शफाअत का ओहदा दे चुका है, इज़्न दे चुका है, उसको मुखातब करने में क्या प्रॉब्लम और क्या इशू आ सकता है? ये है सवाल। इस सवाल का जवाब या इसको एनालाइज करने से पहले जो हिस्टोरिकल एनालिसिस था इसका, तारीखी तज़िया, वो ये था कि 8वीं सदी 8th सेंचुरी, यानी इस वक्त हम लोग 15वीं सदी के अंदर हैं राइट नाउ। 8th सेंचुरी का मतलब हुआ 700 से लेकर 799 800 तक, ये जो सदी बनेगी ये बनेगी 8वीं सदी हिजरी। इसके मिड से थोड़ा आगे ये वाला कॉन्सेप्ट आया, उससे पहले नहीं था ये, उससे पहले इस पर इत्तेफाक पाया जाता था कि जो शफी है उसको मुखातब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे इश्यूज जिन्होंने रेज किए हैं उनका नाम है इब्ने तैमिया। ये बात याद रखिएगा, इस वक्त हम लोग वहाबियत डिस्कस नहीं कर रहे, एक खाली उसके जिम्न में एक बात आ रही। इब्ने तैमिया ने ये अफकार सबसे पहले पेश किए, उसके बाद उन्हीं से ये अफकार लिए हैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब। मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब। ये नज़रियात इन्होंने इन्हीं से लिए, इब्ने तैमिया से। और फिर मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब और सऊद फैमिली, इनका एक कोलैबोरेशन है कि जिसके नतीजे में सऊदी अरब वजूद में आया। उससे पहले सऊदी अरब कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी ना, वो तो हिजाज कहलाता था, मगर वो जो ममलकत सऊदिया जो बनी है एक फैमिली के नाम पर, तो उसके अंदर ये एग्रीमेंट था इनका मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब के साथ कि अगर फिर आपको इक्तदार मिला तो फिर नज़रियात मेरे होंगे कि जिनको आप प्रचार करेंगे, और मुझे इस बात का इख्तियार देंगे कि मैं इस फ़िलासफ़ी को और इस आइडियोलॉजी को लोगों के दरमियान प्रोपेगेट करूँ। और उसी के नतीजे में फिर वो सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, तमाम वो जो मज़ारात को ढाना है, जन्नतुल बकी वगैरह, और उसी में फिर ये वाली फ़िलासफ़ी ज़्यादा उभर कर सामने आई कि साहब शफ़ात और ये और वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती, जो शफ़ी है उसको मुखातब नहीं किया जा सकता। मुख्तसरन इतना ज़हन में रखिएगा इससे पहले कि हम ब्रेक लें, कि मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब जो हैं और इब्न तैमिया, इन दोनों को बहुत रेजिस्टेंस मिली। आज भी एक बड़ा, एक नादिर या रेयर, जिसको हम कहें कि बहुत छोटा सा एक ग्रोह है मुसलमानों में वहाबियत का, कि जो इस नज़रिए का कायल, जिनको सलफ़ी कहा जाता है, एक बहुत छोटा सा ग्रोह है। मेन स्ट्रीम जो मुसलमान है वो इस नज़रिए को एग्री नहीं करते। इब्न तैमिया को अपने ज़माने में भी बहुत रेजिस्टेंस मिला था, और फिर उसके बाद मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब, तो मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब उस ग्रोह को वहाबी कहा गया उसके वालिद के नाम पर, अब्दुल वहाब, इसलिए कि अगर मोहम्मदी कहा जाता तो पैगंबर अकरम के नाम के साथ ये कन्फ्यूजन होता, लिहाजा इसको कहा गया, इनके फॉलोवर्स को कहा गया वहाबिया। इनफैक्ट अगर आप देखें तो इनकी मुखालफत करने वालों में सबसे पहले मुखालिफ खुद उनके वालिद थे। खुद इनके वालिद जो थे मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब यानी अब्दुल वहाब, उन्होंने अपने बेटे को डिसोन कर दिया था, उन्होंने कहा था कि ये गुमराह हो चुका है। खुद मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब का जो भाई था, पहली किताब या स्टार्ट की जो किताबें मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब के ख़िलाफ़ लिखी गई, उनके अंदर खुद मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब के भाई शामिल थे। उन्होंने किताब लिखी कि मेरा भाई जो है गुमराह हो चुका है, पूरी किताब लिखी उन्होंने। तो इस एक पूरी एक स्टडी है कि वो कितने अफराद हैं कि जिन्होंने वहाबियत के ख़िलाफ़ किताबें लिखी, उनमें शिया कितने हैं और उनमें सुन्नी कितने हैं। तो ख़ुद सुन्नी जो हमारे बरादरान हैं उन्होंने कम किताबें नहीं लिखी हैं। हमारे बहुत अच्छे मौक़िक़ हैं मौलाना ताहिर अब्बास आवान साहब, उनकी एक पूरी रिसर्च इसी टॉपिक के ऊपर है जो छप चुकी है या छपने वाली है, वो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया था। इस ज़माने के अंदर अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो दो किताबें, एक तो ख़ुद आयतुल्ला जाफ़र सुबहानी की है आइन वहाबियत, उसके स्टार्ट में आपको इसका पूरा बैकग्राउंड मिलेगा कि वहाबियत का बैकग्राउंड क्या है। दूसरी एक किताब हमारे फेवरेट राइटर आयतुल्ला नक्कन साहब, उनकी किताब है रद्द वहाबियत, आयतुल्ला नक्कन साहब अली नकी। ये किताब आजकल इस नाम से भी आ रही है, कशफुन नकाब अन अकायद मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब। एक्चुअली नक्कन साहब ने पहले यह किताब अरबी में लिखी थी इसी नाम से, और यह किताब बकी के डिमोलिश होने के बाद पहली लिखी गई किताब थी जो इस टॉपिक के ऊपर लिखी गई थी। बहुत अच्छी किताब, एक्सेलेंट वर्क। फिर उसके बाद नक़न साहब ने इसी किताब का, अपनी ही किताब का खुद ही तर्जुमा किया रद्द वहाबियत के नाम से, विद सम एडिशन उसको ऐड किया, इसलिए कि सब कॉन्टिनेंट के जो इश्यूज थे उसमें कुछ और चीज़ें थी विच वर रिक्वायर्ड देयर, तो उसको उन्होंने उसके अंदर ऐड किया और वो किताब लिखी रद्द वहाबियत। रिसेंट पास्ट में, रिसेंट पास्ट नहीं, प्रेजेंट इसकी ये कहना चाहिए, अभी एक आध साल पहले या दो साल पहले यही किताब रीप्रिंट हुई पाकिस्तान के अंदर और अरबी नाम के साथ प्रिंट किया उसको इस नाम से, कशफुन नकाब अन अकायद मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब। अगर आप वाकई पढ़ना चाहते हैं सीरियसली इस टॉपिक को तो ये दो किताबें आपके लिए बहुत काफ़ी होंगे उसके अंदर। तो अब इसके बाद जो मज़ीद चीज़ें हैं कि कैसे जस्टिफाई होता है कि शफी को मुखातब करना, वो इंशाल्लाह सेकेंड फेज के अंदर डिस्कस करते हैं। परवरदिगार आलम आपका हमें नासिर इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, الحمد للہ اہلہ والصلاۃ والسلام علی اہلہ اما بعد. اب یہ والا جو ایشو ہے نا، اس ایشو کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ ہے کیا. شفیع کو مخاطب کرنا جو اتنا سینسیٹیو یہ ایشو بن گیا، میں نے عرض کیا کہ شیعوں کے اندر تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں یہ والا، ٹھیک ہے، سنیوں کے اندر بھی یہ کوئی ایشو نہیں ہے، وہابیوں کا اس کے حوالے سے اعتراض موجود ہے کہ آپ شفیع کو مخاطب نہیں کر سکتے. اس کے حوالے سے ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس طرح کی کوئی مثال ہمیں ملتی ہے. مثلا اگر قرآن مجید ہی کے اندر کہیں ہمیں یہ چیز مل جائے کہ کسی نے کسی سے دعا کی التماس کی، اس لیے کہ شفاعت طلب کرنا اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر دیجئے، آپ خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے، یہ ہے شفاعت. ایک کیس بنتا ہے کہ دنیا کے اندر یہ کام کر دیجئے دنیا میں، اور ایک ہے آخرت میں. یعنی وہ جو شفیع ہے وہ خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں. یعنی اس شفیع نے خدا سے دعا مانگنی، کس کے بارے میں؟ ایک شخص ہے مسٹر ایکس، اس کے بارے میں. یہ شفیع اس ایکس کے بارے میں خدا سے دعا مانگ رہا ہے، جبکہ یہ شفیع دنیا میں ہے، جبکہ یہ شفیع دنیا میں نہیں ہے، دنیا سے جا چکا ہے. ٹھیک، اب ذرا سا سیناریو کو سمجھیے گا. یہ وہ گنہگار سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ شفیع اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ سکتا ہے، دیر از نو ایشو. ون، جب وہ دنیا میں ہے تب بھی مانگ سکتا ہے اور آخرت میں بھی یہ دعا مانگ سکتا ہے، آف کورس ود دا پرمیشن آف آل مائٹی اللہ، خدا کی اجازت سے وہ دعا مانگ سکتا ہے. ٹھیک، ہمارا ایزمشن یہ ہے کہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں طے ہے کہ خدا نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے. مقام محمود کی بات کی ہوئی ہے، وہ ہے پیغمبر اکرم. ٹھیک ہے، ایک کیس ہم دیکھ لیں تو باقی تمام تر چیزیں ہمارے لیے خود کلیئر ہو جائیں گی. کہ پیغمبر اکرم کو ہم لے لیتے ہیں کہ وہ ہیں شفیع، خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. کون لوگ؟ جو گنہگار ہیں، دنیا میں کر رہے ہیں، آخرت میں کر رہے ہیں. یہاں تک کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اب اس کے بعد آ جاتی ہے وہی والی چیز کہ شفیع کو مخاطب کرنا. یہ شفیع کو مخاطب کر رہا ہے ایکس، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے لیے خدا سے دعا مانگ. یہاں پر جو وہابی حضرات ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ شیعہ اور سنیوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ جو وہابی حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ جو شفیع کو مخاطب کر رہے ہیں، اگر آپ دنیا میں مخاطب کر رہے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں، اگر آپ دنیا میں مخاطب کر رہے ہیں جبکہ یہ شفیع دنیا میں موجود ہے، آپ بھی اس دنیا میں ہیں، شفیع بھی اس دنیا میں، اور آپ اس سے یہ کہیں کہ آپ میرے لیے دعا مانگیے تو کوئی پرابلم. یہ بھی آہستہ آہستہ وہ یہاں تک آئے، پہلے یہ اس کو بھی نہیں اگری کرتے تھے، آہستہ آہستہ یہاں تک وہ آ گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر وہ موجود ہیں اس وقت یہاں پر اور آپ ان کو یہ کہیں کہ آپ میرے لیے دعا مانگیے کوئی پرابلم نہیں، وہ کہتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں. لیکن ونس وہ اس دنیا سے گئے، اب اس کے بعد اگر آپ ان سے یہ کہہ رہے ہیں، مخاطب کر رہے ہیں کہ آپ میرے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کر دیں، تو آپ یہ ان سے نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے جی، ورنہ یہ شرک ہو جائے گا. اچھا، ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ اصولی طور پر یہ بتائیے کہ اگر اس دنیا سے جانے کے بعد ان کو مخاطب کرنا شرک ہے، تو دنیا میں ان کو مخاطب کرنا کیوں شرک نہیں ہے؟ کیا شرک کے اندر بھی ایکسیپشنز ہوتے ہیں کہ یہ والا شرک جائز ہے اور یہ والا شرک جائز نہیں؟ یہ بڑا بھاری کوشچن ہے، بہت بھاری اعتراض ہے کہ یہ شرک کے اندر استثناء کب سے ہونے لگا کہ یہ والا شرک جائز ہوگا اور وہ والا شرک جائز نہیں ہوگا. اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ ان کو مخاطب کر کے کہنا شرک ہے، तो यूं भी शिर्क होना चाहिए, यूं भी शिर्क होना चाहिए। अब हमारे सामने इस हवाले से दो बड़ी अहम आयतें मौजूद हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यह कहा कि बाबा जान हमसे गलती हो गई, ऐ बाबा जान हमारे लिए खुदा की बारगाह में इस्तग़फ़ार कीजिए। ये सूरह यूसुफ के अंदर बरादरान यूसुफ की दुआ मौजूद है, या अबाना इस्तग़फिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना खातेईन, हम लोग यकीनन ख़ताकार थे, ऐ बाबा जान हमारे लिए अल्लाह से दुआ मांगें कि वो हमारी मग़फ़िरत करे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने डांटा नहीं है उस मौके पर। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा सौफ़ अस्तग़फिरु लकुम रब्बी, मैं करीब तुम्हारे लिए अपने रब से मग़फ़िरत तलब करूँगा। तो याकूब अलैहिस्सलाम को तो रोक देना चाहिए था, उन्होंने कहा था कि अभी तक नहीं सुधरे, अभी तक तुमको समझ में नहीं आया, तुम मुझे दरमियान में दुआ के लिए कह रहे हो, खुद खुदा से दुआ मांगो, मुझसे दुआ मंगवाने की क्या ज़रूरत है, ये चीज़ गलत है, ये शिर्क है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम डिड नॉट से एनीथिंग लाइक दिस, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं करीब ये काम करूँगा तुम्हारे लिए। ये एक रेफरेंस बनता है जो बड़ा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हम लोग खुद आपस में एक दूसरे के साथ ये कहते हैं इल्तिमा से दुआ, क्या शिर्क है, जबकि हमारा ये कन्फर्म नहीं होता है कि हमारी दुआ खुदा कबूल कर लेगा, इसलिए कि हमारा जो दुआ करना है एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, हम खुद मरहूमिन के लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल्मोमिनीन वल मोमिनात, इसमें शिया सुन्नी वहाबी कोई एतराज़ नहीं, सब एग्री करते हैं, ठीक है जी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। फिर उसके बाद एक और जो आयत है सूरह निसा की आयत नंबर 64, जिसके अंदर यह है कि वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमु अन्फुसहुम जाऊका फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। फिर खुदा ये कह रहा है कि काश इन्होंने ऐसा किया होता, इस ज़लमु अनफुसहुम, जब इन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया, गुनाह किया, जाऊ का ए हबीब ये आपके पास आते। कौन कह रहा है ये, खुदा, जाऊ का आपके पास आते, फस्तग़फरुल्लाह फिर अल्लाह से इस्तग़फार करते, वस्तग़फर लहुमुर रसूल और रसूल भी इनके लिए इस्तग़फार करते। ये जो जुमला है वस्तग़फर लहुमुर रसूल, रसूल भी इनके लिए इस्तग़फार करते, ये डिसाइसिव है। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो ये अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाते। इस आयत के अंदर परवरदिगार आलम ने मैकेनिज्म सजेस्ट किया कि अगर गुनाह हो जाए तो आओ रसूल के पास, फिर अल्लाह से इस्तग़फार करो, अल्लाह का रसूल भी तुम्हारे लिए इस्तग़फार करे, तो तुम तो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाओगे। ये वो आयत है कि जिसको डॉक्टर तेजानी, बहुत मशहूर नाम है, उन्होंने अहले बैत हल्लाले मुश्किलात, उनकी किताब है, उर्दू तर्जुमा उसका हो चुका है, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इसका है, उसके अंदर उन्होंने अपना एक वाकया ख़ुद लिखा है उसके अंदर कि एक वहाबी आलिम थे, उनके सामने ये डिस्कशन हो रहा था और उन्होंने ये कहा कि अगर मैं कुरान की आयत पेश कर दूं पैगंबर अकरम के वसीला होने के लिए, फिर कबूल करेंगे आप, तो वह कौन सी आयत का, ये वाली आयत, यही आयत उन्होंने पेश की वहाँ पर, वो लाजवाब हो गया था। फिर उसने कहा था कि नहीं, ये जो आयत है ना, ये तो पैगंबर की ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी के बाद शिर्क हो जाएगा, ये क्या बात हुई। यानी आप शिर्क के अंदर ये कहना चाह रहे हैं कि दो चीज़ें होती है, एक शिर्क जायज़ होता है, एक शिर्क नाजायज़ होता है। किसी जिंदा को खुदा के साथ शरीक किया जा सकता है, मुर्दा को खुदा के साथ शरीक नहीं किया जा सकता, क्या ये मतलब है। आयत तो आज भी मौजूद है कुरान मजीद के अंदर, आज भी यही कह रही है कि अगर तुम लोग गुनाह करो, अगर इन लोगों ने ये किया होता, काश के गुनाह करने के बाद ये आते, मैकेनिज्म तो सजेस्ट कर दिए, फिर अल्लाह से इस्तग़फार करते और अल्लाह का रसूल भी इनसे इस्तग़फार करता। अब आप जरा विजुलाइज करें कि एक इंसान है, उसे कोई गुनाह हो गया, पैगंबर अकरम यहाँ पर मौजूद है, वो पैगंबर अकरम के पास आए, फिर अल्लाह से इस्तग़फार करें, पैगंबर कैसे उसके लिए इस्तग़फार करेंगे, ये उनको बोलेगा ना कि अल्लाह के रसूल मुझसे गलती हो गई है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, अल्लाह से मेरे लिए इस्तग़फार कीजिए, इसके अलावा कोई हल है। तो ये पैगंबर अकरम को कहेगा कि अल्लाह के रसूल मेरे लिए इस्तग़फार कीजिए, अगर ये हराम है तो ये कैसे कह रहा है, अगर ये शिर्क है तो ये कैसे कह रहा है। ये है बेसिक पॉइंट इसके अंदर, बात समझ में आ रही। ये हो गया मामला दुनिया का। तो दुनिया के अंदर फिर उन्होंने कहा कि नहीं ठीक से, तो वो उन्होंने तेजानी साहब ने बहुत अच्छा एक उस वक्त मौके पर किया था जब वो वहाबी आलिम थे, उन्होंने ये कहा था कि जनाब अगर ये तो आप पैगंबर की बात कर रहे हैं दुनिया में, तो अगर कोई और भी मुकद्दस शख्सियत हो तो उससे भी ये कहा जा सकता है अगर वो ज़िंदा हो। तो फिर उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा जिच करके रख दिया, वो कह के उन्होंने मुसल्ला बिछाया और परवरदिगार आलम को मुखातब करके कहा, परवरदिगार मैं तुझे तेरे मुकद्दस बंदे खुमैनी का वास्ता देकर कहता हूँ कि तू मेरी मगफरत फरमा। बिल्कुल उनको जिच करके रख दिया था, वो पे चले गए थे वहाँ से। लेकिन हम इस वक्त जो एक प्रिंसिपली जो बात समझना चाह रहे हैं वो ये कि ये गुनहगार इनको मुखातब करें, ये कहते हैं अगर ये शफी जिंदा है तो कोई इशू नहीं है, क्लियर हो गई बात, और अगर ये शफी इस दुनिया से चला गया तो प्रॉब्लम है। हम ये कहते हैं कि जनाब अली ये शफी अगर इस दुनिया से चला भी गया तो भी इसको मुखातब करना शिर्क तो हो ही नहीं सकता, जैसे कि शिर्क के अंदर इस्तिस्ना नहीं होता कि ये वाला शिर्क जायज़ है वो वाला शिर्क जायज़ नहीं है, ठीक है जी। एक बात तो ये याद रखिएगा। दूसरी चीज़ हम ये कहते हैं कि जनाब अली यही जिनको शफी बनाया गया उनमें शोहदा भी शामिल है, उन शोहदा के लिए तो कुरान मजीद नस के साथ ये कह रहा है कि इनको मुर्दा मत समझो, इनको मुर्दा मत कहो, तो फिर उनको मुखातब करना कैसे शिर्क हो जाएगा? आपकी दानिश में उनको मुखातब करने में तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। इमाम हुसैन शहीद हैं, जनाब हमज़ा शहीद हैं, जनाब जाफर तैयार शहीद हैं, और ये सब के सब हयात जावेद पाते हैं किन की वजह से, किसके हुक्म पर इन्होंने अमल किया था? पैगंबर अकरम। अल्लामा नक़वी साहब का बहुत अच्छा जुमला है, वो कहते हैं कि जिसके हुक्म पर अमल करने से हयात जावेद मिलती है वो खुद हयात जावेद से महरूम होगा। अपनी जगह पर एक सोचने वाली बात है। और फिर उसके बाद ये लतीफ़े हैं थोड़े थोड़े सुनते जाइएगा कि वहाबी लिटरेचर के अंदर आपको एक चीज़ मिलेगी, वो कुरान मजीद की जो आयत है ना, इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लमू तस्लीमा अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद, दुरूद के लिए यही आयत है ना, आयत दुरूद जिसको कहा जाता है। तो उसमें यह है कि जनाब जब कोई शख्स पैगंबर अकरम पर दुरूद भेजता है तो होता क्या है, शियों का तो मामला अलग है, सुनियों का मामला भी अलग है, ये तो हम बात कर रहे हैं वहाबियों की, उनके लिटरेचर में ये मिलता है। वो ये कहते हैं कि जनाब अली पैगंबर अकरम तो ज़ाहिर है कि माज़ल्ला मुर्दा है, तो होता ये है कि अगर कोई सलाम करे पैगंबर अकरम को, दुरूद भेजे, दुरूद में यही है सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा, जिसके लिए फिर वो हमारे जो बरेलवी हज़रात हैं वो कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ठीक। तो वो ये कहते हैं कि जनाब पैगंबर अकरम के जिस्म से उनकी रूह अलग है, तो होता यह है कि जब कोई पैगंबर अकरम पर दुरूद भेजता है, सलाम भेजता है, तो फिर परवरदिगार आलम रूह है पैगंबर को जिस्म के अंदर दाखिल। मैं बिल्कुल आपसे ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, ये मैंने खुद पढ़ा है उनकी किताबों के अंदर, कि होता यह है कि पैगंबर अकरम के जिस्म के अंदर रूह को पलटा दिया जाता है, पैगंबर अकरम सलाम का जवाब देते हैं फिर वापस रूह निकाल ली जाती है, फिर कोई दूसरा सलाम करता है तो फिर वापस रूह को दाखिल कर दिया जाता है, फिर पैगंबर अकरम जवाब देते हैं फिर उसके बाद रूह को निकाल लिया जाता है, फिर थर्ड आता है वो सलाम करता है तो फिर पैगंबर अकरम के जिस्म में रूह दाखिल होती है, वो जवाब देते हैं और फिर उसके बाद रूह निकाल दी जाती है। आई यू गेटिंग द पॉइंट? दिस इज़ हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। वाकई मैंने सोचा कभी कि रोज़ाना कितने अफराद हैं जो पैगंबर अकरम को सलाम करते हैं, तो मुसलमान जो हैं वो करोड़ों की तादाद में। अब शियों के अंदर आप देखिए तो ये तस्बीह करना दुरूद की ये तो बड़ा कॉमन एक फैक्टर है, दुरूद और सलाम। सुनियों के अंदर अगर आप देखें तो कितने दरवेश ऐसे हैं कि जो दुरूद और सलाम ही किए जा रहे हैं और कुछ करते ही नहीं, वो यही काम कर रहे हैं। तो अब इसके बाद तो परवरदिगार आलम ने फैसला किया होगा कि फरिश्तों को ये कह दिया होगा कि अब रूह निकालने की ज़रूरत नहीं, अंदर ही रहने दो, जैसे कि बार बार निकालना बार बार डालना ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मुसलसल सलाम करने वाले तो सलाम किए जा रहे हैं, तो अब ये काम करना छोड़ दिया जाए और वो जो रूह है उसको अंदर ही रहने दिया जाए तो मसला फिर भी हल हो जाएगा उसके अंदर। इन फैक्ट ये सारी चीज़ें जो है ना ये मज़ाक़ खेज़ बन जाती हैं इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं, मगर लिखे हुए मौजूद हैं, चेक करेंगे तो आपको मिलेगा सारी चीज़ें। आइए ज़रा सा इसके अंदर उन आयतों को देखें कि जो इन्होंने पेश की। ये फरमाते हैं कि इसके जवाब में कहना चाहिए, आठवीं सती हिजरी तक शफाअत की मशरूईयत, मशरूईयत का मतलब होता है उसका शरअन दुरुस्त होना, पर मुसलमानों के दरमियान इत्तेफाक नज़र था। लेकिन आठवीं सदी के आधे हिस्से के बाद चंद गिने चुने अफराद इसकी मुखालिफत में उठे और उन्होंने इसे नाजायज़ करार दे दिया, जबकि कुरान मजीद की आयात मोतबर अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुस्लिमीन की मुसलसल सीरत उसके जायज़ होने के गवाह हैं, क्योंकि शफाअत करने वालों की शफाअत दर हकीकत उनकी वही दुआ है। ये इम्पॉर्टेंट है जुमला, इस जुमले को ज़रा मार्क कीजिएगा, शफाअत करने वालों की शफाअत दर हकीकत उनकी वही दुआ है जो वो अफराद के हक में करते हैं, और मोमिनीन से दुआ की दरख्वास्त करना किसी शक व शुबे के बग़ैर एक जायज़ और अहसन काम है, चे जाए कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की दरख्वास्त करना। यानी जब हम एक दूसरे से दुआ की इल्तिमास कर सकते हैं तो पैगंबर अकरम से दुआ की इल्तिमास क्यों नहीं कर सकते। पैगंबर अकरम से नकल की गई इब्ने अब्बास की एक हदीस इस बात की रोशन दलील है कि मोमिन की शफाअत दूसरे लोगों के हक में उसकी दुआ है। ज़रा देखिए ये, मा मिन रजुलिन मुस्लिमिन यमूत, जब कोई मुसलमान मर जाए, फ़यकूम अला जनाजत ही अरबऊना रिजालन, और 40 अफराद उसके जनाजे में शरीक हों, ला युशरिकून बिल्लाह शैआ, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करार ना देते हों, तो होगा क्या, इल्ला शफ़अहुमुल्लाह फ़ीह, अल्लाह उनकी शफ़ात उस मरहूम के हक में कबूल करेगा, यानी अगर वो इस काबिल हुआ खुदा कबूल करेगा उनकी शफ़ात को, यानी उनकी दुआए मगफ़रत को उनके लिए कबूल करेगा, क्योंकि ये बात मुसल्लम है, ये सही मुस्लिम की यह हदीस है, ये सही मुस्लिम की ये हदीस है। नसरुल इश्तियादी साहब का नाम सुना है आप लोगों ने, तो सुना होगा, आपने भी नहीं सुना है, नसरुल इश्तियादी साहब का नाम, हाँ नसर में नज़म करते थे वो, YouTube पर उनकी स्पीचेस हैं, सुनिएगा मज़ा आएगा आपको, बड़े उम्दा खतीब थे, बड़े अच्छे मुकर्रर थे, तो काफियों को मिलाना और क्या उनका एक अंदाज़ हुआ करता था। तो वो एक जुमला कहा करते थे कि जो सही मुस्लिम की भी बात ना माने फिर वो सही मुस्लिम कैसे हो सकता है, अज़रा तफन्नुन वो इस तरह से कहा करते थे। तो ये सही मुस्लिम की रिवायत, क्योंकि ये बात मुसल्लम है कि नमाज जनाजा के दौरान 40 मोमिनीन की शफाअत उस मैयत के हक में उनकी दुआ के सिवा कुछ और नहीं है। दूसरी मिसाल दे रहे, तारीख की वर्गर्दानी से मालूम होता है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी आ हज़रत की ज़िंदगी में आपसे शफाअत की दरख्वास्त करते थे। तिर्मिज़ी अनस बिन मालिक से नकल करते हुए लिखते हैं कि अनस ने कहा, मैंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि क़यामत के दिन मेरी शफाअत फरमाएं। पैगंबर ने फरमाया, ऐसा ही करूँगा। मैंने अर्ज़ की, आप क़यामत के दिन कहाँ पाऊँगा? आपने फरमाया, पुल सिरात के किनारे। नीचे अगर आप देखें तो हाशिए के अंदर उसकी अरबी इबारत भी मौजूद है, सालतुन नबी अय्यशफ़ अली यौमल क़ियामा, कि मैंने अल्लाह के रसूल से सवाल किया कि आप क़यामत के दिन मेरी शफाअत कीजिएगा, फ़क़ाला अना फ़ाइलुन, कहा कि मैं करूँगा। क़ुल तो फ़ऐन अतलुबु का, मैं आपको कहाँ पाऊँगा? फ़क़ाला अला सिरात, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सिरात पुल सिरात के पास मिलूँगा। ये सही तिर्मिज़ी की रिवायत है और इसका बाब है माजा फिशान सिरात। अभी जो हमने डिस्कस किया जनाब याकूब अलैहिस्सलाम का केस, उसके अंदर भी यही है, उसी की उन्होंने मिसाल दी है सूरह यूसुफ की आयत नंबर 97 कि या अबाना इस्तग़फिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन, क़ाल सौफ़ा अस्तग़फिरु लकुम रब्बी, कि बिरादरान यूसुफ ने कहा कि बाबा जान हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारी मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, हमने गुनाह किया है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, सौफ़ा अस्तग़फिरु लकुम रब्बी। दूसरी जो मिसाल इन्होंने कुरान से दी है वो भी अभी हमने डिस्कस की कि वलो अन्नहुम इज़्ज़लमु अन्फुसहुम जाऊका, ये जाऊका बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि काश इन्होंने ये किया होता अपने नफ्स पर जुल्म करने के बाद कि वो आपके पास आते, फस्तग़फिरुल्लाह, फिर अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते, वस्तग़फ़र लहुम रसूल, اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، لوجد اللہ تواب رحیمہ. جاؤ کا بہت امپورٹنٹ ہے، استغفر لہم الرسول اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح سے تیسری جو مثال ہے جو ہم نے ڈسکس نہیں کی تھی وہ منافقین کے بارے میں، اور وہ کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے منافقین سے، تعالو آ جاؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں، لو وو رؤوسہم، تو وہ اپنے سر پھرا لیتے ہیں، یعنی یوں کرنے لگتے ہیں، اپنے سروں کو گردش دینے لگتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑانے لگتے ہیں. ورأیتہم، اور تم دیکھتے ہو ان کو، یسدون وہم مستکبرون، کہ تکبر کی بنا پر وہ منہ موڑ لیتے ہیں. تو انٹرسٹنگ یہ ہے، جو واقعاً یاد رکھنے والی بات ہے، کہ قرآن مجید نے پیغمبر اکرم کے دعائے مغفرت سے منہ موڑنے والوں کو منافقین اور مستکبرین سے تعبیر کیا، یہ تکبر کرنے والے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغفار در حقیقت وہی طلب شفاعت ہے، اور چونکہ طلب استغفار کی مخالفت نفاق اور استکبار کی علامت ہے، لہٰذا قدرتی طور پر اس کی انجام دہی بھی خدا کے حضور ایمان و خضوع کی علامت ہوگی. پھر فرماتے ہیں، اور چونکہ اس بحث سے ہمارا مقصد شفاعت کی درخواست کے جائز ہونے کو ثابت کرنا ہے، لہٰذا ان آیات کے مطابق شفیع کا زندہ نہ ہونا مقصد کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتا، جس پر ہم نے بات کی کہ وہ زندہ ہو یا نہ ہو مقصد کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتا، اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ والا شرک جائز ہے اور وہ والا شرک حرام. حتیٰ اگر فرض کر لیا جائے، یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے، حتیٰ اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ آیات صرف زندہ لوگوں کے بارے میں وارد ہوئی ہیں نہ کہ مردوں کے لیے، پھر بھی اس سے ہمارے مقصود کو نقصان نہیں پہنچاتا، کیونکہ اگر زندوں سے شفاعت کی درخواست شرک نہیں ہے تو قدرتی طور پر مردوں سے شفاعت کی درخواست بھی شرک نہیں ہوگی. یہ کی پوائنٹ ہے، وہابی حضرات اسی کے اوپر اصرار کرتے ہیں، اس لیے کہ شفیع کی حیات و موت شرک و توحید کی بنیاد نہیں ہے، اور جو چیز ارواح سے درخواست شفاعت کے وقت ضروری ہے وہ ان کی قوت سماعت ہے کہ وہ سن سکتے ہیں. کہ ہم توسل کی بحث کے سلسلے میں اس کی وضاحت کریں گے اور مذکورہ رابطے کے وجود اور فائدے کو بھی ثابت کریں گے، جو اس وقت ہماری بحث سے خارج ہے، مگر پھر بھی ہم نے اس کو ٹچ کیا تھا. یہاں پر اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ مومنین و موحدین کی پیغمبروں اور اولیاء خدا سے شفاعت کی درخواست اور بت پرستوں کی بتوں سے شفاعت کی درخواست کے درمیان آسمان و زمین کا فرق ہے. ایک وہ ہے بت، جس کے بارے میں طے شدہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو کوئی ایسا اختیار نہیں دیا، نہ وہ سن سکتا ہے نہ خدا نے اس کو کوئی اختیار دیا. اس کو یہ کہہ کر رب مان لینا، عبادت کرنا اس کی، اور پھر اس کے بعد شفاعت کا عنوان وہاں پر چپکا دینا، تو ظاہر ہے کہ مشرکین تو بہت ساری بیتو کی باتیں کر رہے تھے، اس میں سے ایک بیتو کی بات یہ بھی تھی، کہا ہونا شفعاء ہونا، کہ یہ ہمارے شفیع ہیں اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو خدا نے شفاعت کا اختیار دیا ہے ان کی بھی آپ عبادت نہیں کر سکتے، عبادت تو صرف خدا کی ہوگی، مگر کسی سے دعا کی التماس کرنا اور کسی کی عبادت کرنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. جب یہ کہا جا رہا تھا کہ آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں، تو یہ کہا جا رہا تھا کہ آؤ اللہ کے رسول کی تم عبادت کرو، یہ کہا جا رہا تھا؟ جب وہ بات کہی جا رہی تھی تھوڑی دیر پہلے جو ہم نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام سے برادران یوسف نے یہ کہا کہ بابا جان ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کریں، تو کیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ سے یہ کہہ کر آپ کی عبادت کر رہے ہیں؟ نانسنس ہے. دعا کی درخواست کرنا، طلب استغفار کرنا، مغفرت طلب کرنے کے لیے دعا کا کہنا اور کسی کی عبادت کرنا، ان دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق. جو وہابی حضرات ہیں وہ اس نقطے سے غافل ہیں. جو بتوں کے حوالے سے مشرکین مکہ کا نظریہ تھا وہ ایبسلوٹلی باطل تھا. وہ کہتے تھے یہ ہمارے شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں، لہٰذا ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. ان دو چیزوں میں کیا توقع ہے؟ آج اگر کوئی یہ کہے کہ چونکہ پیغمبر اکرم میرے شفیع ہیں لہٰذا میں ان کی عبادت کرتا ہوں، یہ بالکل غلط ہو جائے گا. اگر کوئی یہ کہے کہ چونکہ شہداء کربلا یا شہداء غزوہ احد وہ شہداء ہیں اور خدا کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والے ہیں لہٰذا میں ان کی عبادت کرتا ہوں، دیٹ وڈ بی ایبسولوٹلی رانگ. عبادت بالکل الگ چیز ہے. عبادت کا مطلب ہوتا ہے کچھ ایسا کرنا کہ جس سے इस बात का इजहार हो कि सामने वाले को वो खुदा समझता है या खुदा का शरीक समझता है। वो तो आप कुछ भी करेंगे तो फिर वो इबादत के उनवान की वजह से हराम हो जाएगा, मगर अगर आप इबादत नहीं कर रहे हैं, आप उनसे दुआ की इल्तिमास कर रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू वहाबी हजरात का बन गया और वो उस पर गौर करने के लिए तैयार ही नहीं होते। यानी इसके ऊपर वाकई हमें यह शिकवा करना पड़ता है कि बहुत सतही नज़र है, जिस तरह से खवारिज की होती है, खारजियों की होती है। जिस तरह खवारिज है, ना सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती है, ना गौर करने के लिए वो तैयार होते हैं, और बस एक तलवार निकाल लो और आँख फोड़ दो और गर्दन काट दो और ये कर दो और वो कर दो, ये उनका अंदाज़ यहाँ पर हमें नज़र आता है। जो बदकिस्मती, फिर उनमें से जो अफराद सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, गौर करने लगते हैं, उनको समझ में आ जाता है, तो फिर उसके बाद वो उसको तर्क कर देते हैं। हैं बहुत से अफराद जिन्होंने वहाबियत को तर्क कर दिया, ऐसे अफराद हैं, मुस्तबसिर हुए। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मुवाहिदीन व मुमिनीन दो बुनियादी मतालिब के इकरार के साथ औलिया इलाही से शफाअत की दरख्वास्त करते हैं। दो बुनियादी मतालिब, क्या इनका ताल्लुक है उसके साथ? दो बुनियादी मतालिब। नंबर एक, शफाअत का मकाम और मर्तबा एक ऐसा मर्तबा है जो सिर्फ खुदा से मरबूत है, उसी के इख्तियार में, उसी के इख्तियार में। वो किसी को अगर इज़्ज़त दे तब ये इख्तियार दूसरे के पास आता है, वरना ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार का है। बिल्कुल एग्रीड। मंजर लजी यशवाओ इंदऊ इल्ला बे इसने, कौन है जो खुदा की बारगाह में शफात करे मगर वो कि जिसे खुदा खुद इस बात की इजाज़त दे। जब इज़्ज़त परवरदिगार आ गया तो मामला ख़त्म हो गया। ये नंबर दो, शफात करने वाले जिनकी तरफ मुवाहिदीन व मोमिनीन दरख्वास्त का हाथ बढ़ाते हैं खुदा के मुखलिस बंदे होते हैं कि बारगाह इलाही में तकर्रुब की वजह से उनकी दुआ कबूल होती है। मस्कूरा दो शरायत की बिना पर असर बेसत में, यानी जब पैगंबर अकरम ने ऐलान रिसालत किया, शफात के बारे में मुवाहिदीन और मुशरिकीन के दरमियान बुनियादी फ़र्क वाज़े हो जाता है। अव्वल, मुशरिकीन शफात के नफाज के सिलसिले में किसी किस्म के कैद व शर्त के पाबंद नहीं थे। क्या ना वो कहते थे कि खुदा दे ना दे, ये तो हो गए, ये बुद्ध जो हैं वो शफात करने वाले हैं, खुदा कौन होता है इनको मना करने वाला, खुदा तो कर ही नहीं सकता इनको मना। ना खुदा ने उनको ये इख्तियार दिया था उन बुतों को, और दूसरी बात ये कि वो किसी कैद व बंद के भी कायल नहीं थे। एक बुनियादी गलती इनकी थी। गोया खुदा ने अपना हक अंधे और गूंगे बुतों को बख्श दिया है, जबकि मुवाहिदीन यानी तौहीद के मानने वाले क़ुरान की रहनुमाई के मुताबिक मकाम शफात को सिर्फ खुदा का हक समझते थे और शाफईन की शफात को इज़्नो रज़ाए इलाही पर मुनहसर समझते थे। दूसरे ये कि असर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशरिकीन अपने हाथ से बनाए हुए बुतों को रब कहते थे, इलाह कहते थे, और अब इलाह का मतलब खुदा, रब यानि पालने वाला, और अपनी हिमाकत और बेवकूफ़ी की वजह से तसव्वुर करते थे कि ये बेजान मौजूदात रुबूबियत और उलूहियत के एक हिस्से के मालिक हैं, जबकि मुवाहिदीन व मोमिनीन पैगंबरों और इमामों को खुदा के मुकर्रब बंदे समझते हैं। इस अमर का बराबर इकरार करते हैं कि अब्दुहू व रसूलुहू। हम तशहुद के अंदर क्या पढ़ते हैं? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के अब्द हैं, बंदे हैं और उसके रसूल हैं। इबादल्लाह सालहीन हम कहते हैं, अल्लाह के बंदगान जो साले बंदे हैं। इन दोनों में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। इस लिहाज से क़ुरान मजीद की इन आयात के ज़रिए जिनसे मुशरिकीन की बुतों से शफात की नफ़ी होती है, इस्लाम में असल शफात की नफ़ी करना एक खुल्लम खुल्ला मुगालता और बेअसास कयास के अलावा कुछ और ना होगा। ये इम्पॉर्टेंट था, लिहाजा इसकी इबारत भी हमने आपके सामने रीड आउट कर दी। कोई सवाल है तो इरशाद फरमाइए, वरना बहस यहाँ पर शफात की मुकम्मल होती है। जी माजूर,
ऐसा नहीं देख पाया, माजूर होने से खबर के साथ क्या ताल्लुक है? हाँ फरमाइए।
अच्छा यार मेंटली जो रिटार्डेड है, एक बात जहन में रखिएगा, ये अलबत्ता ताल्लुक तो इसका अदले इलाही के साथ है, बुनियादी तौर पर वो अफराद जो इस दुनिया में, उनके ऊपर कुछ हैं शरायत तकलीफ, ये जो है ना नमाज पढ़ना ज़रूरी है, रोज़ा रखना ज़रूरी है, या मसलन उन हज करना ज़रूरी है वगैरह, उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिनको कहा जाता है शरायत तकलीफ़। ये तकलीफ़ है ना, मुकल्लफ़ बनाया गया यानी जिम्मेदारी दी गई, जिम्मेदारी दी गई तो तकलीफ़ आई ना कि ये करना है। ये शरायत तकलीफ़ जो है उसके अंदर एक शर्त है साहिब अक्ल होना, अगर कोई शख्स साहिब अक्ल ही नहीं है तो उसके ऊपर कोई तकलीफ़ नहीं है, ना उसके ऊपर नमाज वाजिब है, ना उसके ऊपर रोज़ा वाजिब है, ना उसके ऊपर अगर पैसा है भी तो भी हज वाजिब नहीं, कुछ भी नहीं वाजिब है। परवरदिगार आलम ने उसके ऊपर से कलम जो है मरफू कर दिया, उसके लिए कोई सवाल जवाब नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके लिए, ना कब्र का कोई अजाब है। क्या बेचारे ने करना क्या था गरीब ने जिसके पास अक्ल ही नहीं है, तो परवरदिगार आलम की तरफ से उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब उसके बाद जो अगला जो यहाँ पर असल आपको नज़र आ रही है, दर तौबा का खुला होना, ये हम वैसे ही डिस्कस कर चुके जब हम शफात को डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने गुजारिश की थी आपसे कि ये रहमत परवरदिगार के मुख्तलिफ अंदाज़ हैं, कभी खुदा वैसे ही माफ़ कर देता है, तौबा भी नहीं किए तो भी माफ़ कर दिया, कभी तौबा के बाद माफ़ कर देता है, कभी मैदान क़यामत में इंसान का गिड़गिड़ाना, खुद उसी का खुदा की बारगाह में उस मौके पर गिड़गिड़ाना, जबकि हमारा एजम्पशन ये है कि उसने बहुत से अच्छे काम भी किए हैं, तो परवरदिगार आलम वहाँ पर भी उसको माफ़ कर दे, वईद को रिमूव कर दे, यानी वईद के मुताबिक उसको जहन्नम में ना डाले, तो ये खुदा पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। जन्नत का अगर कोई एंटाइटल्ड हो और उसको जन्नत में ना डाले तो यकीनन ये परवरदिगार आलम के ऊपर एक इल्ज़ाम आएगा, लेकिन माफ़ कर देना इसके ऊपर परवरदिगार आलम की मलामत माज़ल्ला नहीं की जा सकती, ख़ास तौर पर जबकि वो मामला हुकूकुल्लाह से मुतल्लक हो, हुकूकुन्नास से मुतल्लक ना हो। हुकूकुन्नास से अगर मुतल्लक है तो सीधी सी बात है परवरदिगार आलम ने पहले ही इस बात को वाज़े कर दिया है कि जब तक वो नहीं माफ़ करेगा मैं भी माफ़ नहीं करूँगा, एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ तक हुकूकुल्लाह का मामला है उसके अंदर गुंजाइश बनती है। फिर जजा की बहस इन्होंने की है, ठीक है, सॉरी मैं नहीं समझ पाया आपका सवाल। हाँ वहाँ पर भी हो सकती है परवरदिगार आलम, एग्जैक्टली मैं ये आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि एक तो वो तौबा है जो इस दुनिया के अंदर की गई, इसका तो खुदा ने कंडीशंस के साथ वादा कर लिया, ठीक है ना, इस दुनिया के अंदर परवरदिगार आलम ने वादा कर लिया है कि अगर कोई जैनवन तौबा करेगा तो वो तो परवरदिगार आलम कबूल कर लेगा, ठीक है। लेकिन अब आइए उस केस के अंदर कि जहाँ परवरदिगार आलम ने वादा नहीं किया, परवरदिगार आलम उसने तौबा ही नहीं की इस दुनिया के अंदर, क्या उसके गुनाह माफ़ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, फिर भी माफ़ हो सकता है। एक वो तौबा है, देखिए अब ज़रा सा इसके ऊपर आइए, कुरान मजीद की एक आयत सुनिए, इन्नमत तौबतु अलल्लाह लिल्लज़ीना यअमलूना सुअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीब। तौबा तो बस उसकी कबूल करना अल्लाह पर ज़रूरी है, अल्फाज भी तो आप देखिए, इन्नमत तौबतु अलल्लाह, अलल्लाह का मतलब क्या होता है? अला, अला का मतलब होता है जिम्मेदारी। मैं अगर ये कहूँ ना कि अलैका अल्फ दिरहमिन, कि तुम पर लाजिम है 1,000 दिरहम कि तुम दो मसलन, तो अला के ज़रिए से ज़िम्मेदारी को समझाया जाता है, लाम के ज़रिए से हक को समझाया जाता है, समझो लहू अलैया अल्फ दिरहमिन, उसके हक में मेरे ज़िम्मे हैं 1,000 दिरहम, लाम हक को बताता है, अला बताता है ज़िम्मेदारी को। परवरदिगार आलम ने लफ्ज़ अला इस्तेमाल किया, कतब रब्बुकुम अला नफ्सिह रहमा, तुम्हारे रब ने अपने आप पर रहमत को वाजिब कर लिया, कौन वाजिब करेगा खुदा के ऊपर? खुदा खुद ही अपने आप पर उसके लुत्फ व करम की वजह से अगर वाजिब करे तो करे, वरना कौन उसके ऊपर कोई चीज़ वाजिब कर सकता है। अब तौबा के मामले में क्या है? परवरदिगार कहता है इन नमत तौबा तो अल्लाह, तौबा तो बस उसकी कबूल करना अल्लाह पर लाजिम है, लिल्लज़ीना वो लोग, लिल्लज़ीना उनके हक में, या अमलून सुअ बिजहालतिन, कि जिन्होंने बुरे काम को अंजाम दिया जहालत की वजह से, आउट ऑफ इग्नोरेंस, सुम्मा यतूबूना मिन करीब, उसके बाद फिर उन्होंने फौरन तौबा कर ली, सुम्मा यतुबूना मिन करीब फौलाएगा यतुबुल्लाहु अलैहिम, तो अल्लाह उनकी तौबा कबूल करेगा लाजमी तौर पर। अल्लामा नक़्न साहब ने इस आयत की ज़ेल में लिखा कि बड़ी हिम्मत शिकन आयत है ये, यानी आदमी की हिम्मत जो है पस्त हो जाए कि बस इन्हीं की तौबा खुदा कबूल करेगा। ये नहीं कहा, खुद ही वजाहत की उसकी, ये नहीं कहा कि इन्हीं की तौबा कबूल करेगा, ये कहा कि इनकी तौबा कबूल करना तो खुदा ने लाजिम कर लिया। कि ये तो मैकेनिज्म हमारे सामने आ गया कि अगर वाकई कोई इस तरह से तौबा कर रहा है कि आउट ऑफ इग्नोरेंस उसने गलत काम कर लिया और फौरन उसने तौबा कर ली जैसे उसको पता चला, तो ये तौबा कबूल करना तो खुदा ने अपने आप पर लाजिम कर लिया। वन, लेकिन क्या इसके अलावा खुदा तौबा कबूल करना चाहे तो नहीं कर सकता, ये नहीं कहा है। इनकी तौबा कबूल करना लाजमी है, बाकी जो हैं उनकी तौबा कबूल हो भी सकती है, रद्द भी हो सकती है। अब खुदा हकीम अल इतलाक है, तो खुदा कोई भी काम करेगा तो बगैर वजह के नहीं करेगा, रहमत परवरदिगार ही इस बात की मुतकाजी हो जाए जो यहाँ पर आयत दी भी हुई है कि कतब रब्बुकुम अला नफ्सि रहमा, जो मैंने अभी पढ़ी भी आपके सामने, कि तुम्हारे रब ने अपने आप पर रहमत को भी वाजिब कर लिया। तो आउट ऑफ मर्सी अगर वो किसी को वैसे ही माफ़ करना चाहे तो कर सकता है, मैदान कयामत में आउट ऑफ मर्सी वैसे ही माफ़ करना चाहे। वहाँ पर तौबा से ज़ाहिर है कि तौबा का मतलब पलट कर आना, तो अब वो किसी अमल की रेक्टिफिकेशन तो होने से रही, वो तो दुनिया में हो सकती थी, मगर मैदान कयामत में एक इंसान गड़गड़ा रहा है परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, मगफरत कर दे, मगफरत कर दे, खुदा माफ़ कर दे, देर इज़ नो प्रॉब्लम, देर इज़ नो हार्म। लफ्ज़ तौबा शायद उसके लिए मुनासिब ना हो, इस्तग़फ़ार ज़्यादा मुनासिब है। तौबा के अंदर तो ये होता है पलट कर वापस आना और उसके बाद फिर मसलन उस काम को ना करना। अब वो ना करना तो गुंजाइश ही नहीं है ना, दुनिया से तो हम जा चुके हैं। दुनिया के अंदर एक इंसान ये कहे कि मालिक आइंदा मैं ये नहीं करूँगा तो बात समझ में आती है, दुनिया के अंदर अभी है तो जब तक ज़िंदगी बाकी है आइंदा मैं ये नहीं करूँगा, ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, अब तो कयामत के मैदान में हम लोग खड़े हुए हैं। इस्तग़फ़ार बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता बीबी, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, अमल का दरवाज़ा तो बंद हो गया बीबी, बिल्कुल सही बात है, तौबा का दरवाज़ा भी बंद हो गया। उस एतबार से तौबा के दरवाजे बंद है कि वापस आप कुछ कर नहीं सकते, अमल तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, हिसाब किताब होगा, उस हिसाब किताब के बाद ये बात आ गई कि ये एंटाइटल है जहन्नम के लिए, तो वो क्या करेगा खुदा से, ये कहेगा ना परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, और क्या बोलेगा, बिल्कुल कर सकता है, खुदा के ऊपर क्यों कौन पाबंदी लगा सकता है। मैं ये शफात कब हो रही है खुदा, आप यही देखें ना, शफात कब हो रही है, कयामत नहीं हो रही है ना बीबी, किन की हो रही है, वही तो हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि कबीरा एक सगीरा गुना है, अगर कबीरा के लिए तुमने अपने आप को बचा लिया तो सगीरा को तो हम वैसे ही माफ़ कर देंगे, वो क्या बात हो रही थी, ये तो सब था कि अगर तुमने फ़र्ज़ करो तौबा नहीं भी की, माज़ अल्लाह खुदा ना करे, यानी उस नौबत वहाँ तक जाने नहीं देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान अपने आप को खामा का इनक्रेज करे कि वहाँ तक वो पहुँचाए, बहस ये हो रही है कि एक केस है कबीरा गुनाहों से अपने आप को बचाया, सगीरा गुना जो है वो करता रहा, ठीक है जी, तौबा ही नहीं की उसने, तो अब वो जो आयत अभी हमने आपके सामने पढ़ी सूरह निसा वाली, उसके मुताबिक तो उस सगीरा गुना की भी तौबा नहीं होनी चाहिए ना, इसलिए की नहीं है तौबा। लेकिन परवरदिगार आलम ने कहा कि नहीं, अगर तुमने कबीरा से अपने आप को बचा लिया तो सगीरा को तुम वैसे ही माफ़ कर देंगे। अब ये खुदा का लुत्फ है, ये करम है परवरदिगार का। अगला मरला है कि जो कबीरा गुना थे उसके लिए पैगंबर अकरम ने एक बात कही कि भाई मैं उन अफराद के लिए दुआ मांगूंगा, शफात करूंगा, मेरी उम्मत में अगर किसी ने कबीरा गुना भी किया है मैं खुदा की बारगाह में शफात ज़रूर करूँगा। शफात क्यों कर रहे हैं, ताकि परवरदिगार कबूल करें। ये परवरदिगार आलम अपने हबीब के स्टेटस को समझाने के लिए कि मैं अपने हबीब के सदके में इनको माफ़ करता हूँ, ठीक है, कर सकता है खुदा, क्यों नहीं कर सकता। अब वहाँ पर मैदान कयामत में मैं पैगंबर अकरम से अगर ये कह सकता हूँ अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ करें, मैं जनाब सैयदा से हाथ जोड़कर कह सकता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ मांगें, तो फिर उस मौके पर मैं क्या खुदा से ये नहीं कह सकता है परवरदिगार तू मुझे माफ़ कर दे, बिल्कुल कह सकता हूँ। दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, खुदा से तो इंसान कह ही रहा है कि परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, साथ साथ वो कह रहा है कि आप भी मेरे लिए दुआ मांगें। आप उस वक्त तो और कोई तो मांगने वाला है नहीं, यही अफराद हैं कि जो खुदा से कुछ कह सकते हैं, इसलिए कि खुदा ने इनको इजाज़त या इज़्न दिया हुआ है, तो उसमें इनकी वजह से या बराह रास्त परवरदिगार आलम किसी केस के अंदर यूँ किसी केस के अंदर यूँ अगर कबूल करके उसको माफ़ कर दे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, आई यू गेटिंग द पॉइंट, कुरान मजीद की आयतें इस हवाले से मौजूद है, फरमाइए। किसका मुश्ताक नहीं है? अफवा दर गजर का नहीं, ये जुमला नहीं है वहाँ पर। जुमला जो है वापस सुनिएगा, इन नमत तौबतो, तौबा तो बस उसकी कबूल करना अल्लाह, अल्लाह पर ज़रूरी है। लिल्लज़ीना यामलून सू अब जहालतन, जिसने अमल बद किया जहालत की वजह से, न जानने की वजह से। सुम्मा यतुबून मिन करीब, उसके बाद फिर फौरन तौबा कर ली। इसका नतीजा आप ये निकालते हैं कि फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जिन्होंने नोइंगली किसी गुनाह के काम को अंजाम दिया उसका क्या होगा? जवाब यही है कि उसकी तौबा कबूल करना खुदा के ऊपर ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अब अगर खुदा उसकी तौबा कबूल कर रहा है तो फिर आउट ऑफ मर्सी है, ये परवरदिगार आलम का तौबा कबूल करना अपनी रहमत की वजह से। वो रहमत का तो बहुत ही आला दर्जा है कि जिसके अंदर खुदा ने पहले अनाउंस कर दिया कि यूं कर लो तो मैं तौबा कबूल करने को गारंटेड करता हूं, यहीं पर तुमको जमानत देता हूं कि मैं तौबा कबूल कर लूंगा तुम्हारी। मगर उसी सूरह निसा के अंदर वो आयत भी तो है जो हमने पहले डिस्कस की थी कि इन तश्तनेबू कबायरा मा तुनहूना अनहू नुकफ्फिर अनकुम सय्यातुकुम, कि अगर तुम अपने आप को कबीरा गुनाहों से बचा लो तो सगीरा को तो हम वैसे ही इग्नोर कर देंगे। ये क्या हुआ? तौबा के बाद तो कबीरा भी माफ़ हो जाता है, ये जो कहा गया कि कबीरा से अपने आप को बचा लो तो सगीरा को तो हम वैसे ही माफ़ कर देंगे, क्या हो? ये वही रहमत का इजहार है इसके अंदर। ठीक है जी, इस गरीब का रह गया हम सवाल इसके अंदर, फिर आते हैं आपकी तरफ। जी,
ये शिफात की हमने बात की और तौबा की बात की, तो दुनिया और मैदान कयामत की बात है, कब्र और बरज़ख के दौरान शिफात हो सकती है?
बेटा, मासूमीन ने ये जुमले तो कहे हैं ना, ये तो पहले भी बात आई थी कि अपने आप को कब्र के लिए तैयार करके आना, मगर रहमत परवरदिगार को हम कहीं पर भी नहीं रोक सकते। कब्र में भी अगर रहमत परवरदिगार शामिल हाल हो और परवरदिगार माफ कर दे तो क्या इसके अंदर नामुमकिन तो नहीं है? कैसे नामुमकिन है? तो बिल्कुल करेगा इंशाल्लाह, अगर उसकी जेन्युइन तौबा है, अगर वो ये गुनाह ने कबीरा करने के बाद भी जेन्युइन तौबा करे, दिल में नदामत, ज़बान से इजहार, इस बात का पूरा इरादा कि आइंदा इस काम को नहीं करूँगा, बिल्कुल क्यों नहीं। बीबी, ये बात जहन में रखिएगा, आप में से जो साहिब औलाद हैं, आप लोग क्या करते हैं अपने बच्चों के साथ? आप उनको चलना सिखाते हैं, वो बच्चा गिरने लगता है तो आप क्या करते हैं? हाथ पकड़ ही लेते हैं ना, आप उसको कहते हैं वहाँ पर नहीं जाना, फिर अगर वहाँ पर जाने लगे और आग हो वहाँ पर, फिर आप जाते हैं उसको बचा लेते हैं, थोड़ी बोलते हैं कि मैंने मना भी किया था, अभी भी अगर जा रहा है तो जाने, तो उसको चलने, तो आप करेंगे? ये नहीं करेंगे। जब आप माँ होते हुए ये काम नहीं कर सकते, खुदा रब है, परवरदिगार है, उसका मामला बहुत आगे है। वो मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने बंदों को माफ़ करने के बहाने ढूंढता है, ये एक उसूल है, इसको याद रखिएगा। परवरदिगार ने बुनियाद इस पर नहीं रखी है कि बस सम हाउ वन वे और द अदर मुझे जहन्नम के अंदर ही भेजना है, नहीं है। हाँ, इंसान जसारत पर आमादा ना हो, नमरूद फिरौन ना बन जाए, यजीद ना बन जाए, वो हरकतें ना करे, कोशिश करे, कोशिश करे आगे बढ़ने की, खुदा से करीब होने की, यही खुदा को पसंद है, बस इतनी सी बात है। बाकी परवरदिगार अपने बंदों को माफ़ करना चाहता है, अपने बंदों को जहन्नम में ही डालने का उसने कोई ऐसा इरादा नहीं किया। डालना चाहे तो बहुत सारे एंटाइटल्ड डाल सकता है वो, मगर वो माफ़ करने के बहाने ढूंढता है। अब उसके बाद मेरे ख्याल में नेक्स्ट सेशन जो है वो पहला एक घंटा जो है उसी के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद अगर आप लोगों के कुछ सवालात हों और कोई चीज़ डिस्कस करनी हो तो बताइएगा इंशाल्लाह, वरना नेक्स्ट टाइम ये तो कंप्लीट हो जाएगा, पहले सेशन में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।